Good morning, ladies and gentlemen. Om Shanti.
Om Shanti.
Now, after the electrifying session by Professor Girish, we request some kind of a soothing balm to be put on our nerves, and that is going to be given by Captain Shiv Singh. The next session is on sleep management. So, I don't want to discuss elaborately about his biodata, just a little bit of, already he has been introduced, I believe that. And Captain Shiv Singh, who is in Indian Navy, and he is posted at present in DRDO Delhi. And he's got long list of his qualifications, starting from BSc to BTech in Electronics and Telecommunication, then MTech and PG Diploma in Value Education and Speciality, MSc also in same subject, and MBA in Self-Management and Crisis Management. And he's been associated with Brahma Kumari since his childhood. You can say genetically he has inherited this property of spirituality from his parents, who was a follower of Brahma Kumari, both father and mother. And his elder brother, who is an engineer, now is totally surrendered in our Brahma Kumari headquarters in Shantivan. And from childhood he has been practicing spirituality, and since inception of this wing, that security services wing, he has been associated with that since 2001. And he has been taking part in a lot of this stress management and others various programs in all over countryside, starting from Indian Army, Air Force, Navy, Coast Guard, BSF, CISF, and all other paramilitary forces. There's a long list of that, and I don't want to elaborate that. And he's expert in talking about stress management, sleep management, particularly the topic he has chosen for today's discussion. And he has done a lot of research on this subject, both his elder brother, I know. And they have given a lot of inputs in this sleep management program. So I don't want to waste my time. I want to hand over the mic to Captain Shiv Singh. He will take over and start discussion on sleep management.
Om Shanti. So all of you who have come here, you are having a sound sleep in night? Okay, so your waking up early is not affecting you? It's affecting. Okay. Generally, if you were at your own place and if you wanted to get up at 3:30 or 4 o'clock, it would be very difficult. But here, it is much easier. And I agree, the format of the program is full day you are listening to the lectures, and baithe-baithe sunne ki aadat itni nahi hoti, to neend aa jaati hai. But otherwise, I have been in and out of this campus several times, and you can feel that difference. A lot of things are much easier here. You don't feel that much tired. Nahi to morning se night tak kaam karo to vyakti thak jata. So this topic is slightly different, but it is interesting, and more important, it is very important. Because this is one activity, probably in our life, we devote the maximum time. ऐसा कोई और एक्टिविटी है, एक ऐसी एक्टिविटी जिसमें आप इतना टाइम डिवोट कर रहे हो? क्या चीज? ब्रीथिंग. ब्रीथिंग इनवॉलेंटरी है एक्चुअली, है ना? यू आर नॉट एक्चुअली डूइंग एफर्ट, है ना? हाँ जी. ईटिंग. बट ईटिंग में कितना टाइम दोगे? आधा घंटा, मतलब वन आवर, वन एंड हाफ आवर्स. वॉकिंग. इतना वॉक करते हो आप दिन में? कितने घंटे वॉक करते हो? How much? Half hour? One hour. सोते कितना हो? 10 किलोमीटर. नहीं, टाइम कितना देते हो? How much time? 1 hour 20. How much do you sleep? Okay, even if you say 4, it is 4 times more than it. So, any activity which you feel?
Thinking.
Thinking is a little subtle. It's not a physical this thing, but we are actually not putting any effort. थिंकिंग का तो ऐसा है कि यू कैन नेवर मेक योर माइंड ब्लैंक, आप चाहो या ना चाहो. सो दिस इज वन ऑफ द बिग डिफरेंस बिटवीन लॉट ऑफ अदर मेडिटेशन वेयर पीपल ट्राई टू मेक द माइंड ब्लैंक, विच कैन नेवर हैपन. इट इज नॉट पॉसिबल. ओनली द वेरी थॉट दैट आई वॉन्ट टू मेक माई माइंड ब्लैंक इज अ थॉट. सो माइंड ब्लैंक नहीं होता. थॉट स्लो या फास्ट हो सकते हैं, ब्लैंक नहीं हो सकते. क्या चीज? सिटिंग. ओके, हो सकता है कुछ जगह. तो अच्छा, आप इतने सारे इन नेचर यू विल फाइंड सो मेनी एनिमल्स, बर्ड्स. आपको ऐसा कोई और जानवर पशु पक्षी जो नहीं सोता हो? हॉर्स नहीं सोता, खड़े खड़े सोता, कोई और नहीं सोता? नहीं, फिश नहीं सोती? सोती, हार्ट ऑर्गन है। क्या चीज? बर्ड्स नहीं सोते? सोते हैं, सोते। सो इन योर लाइफ फॉर दिस वन एक्टिविटी यू आर गिविंग द मैक्सिमम टाइम, डेफिनेटली इट हैज टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी, यस और नो? हम अपना टाइम ऐसी थोड़ी किसी एक्टिविटी में देंगे अनलेस यू, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी। सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाई इज स्लीप सो इंपॉर्टेंट? रिज्यूविनेट, रिचार्ज, है ना? ठीक है, तो इसको वी विल सी इट इन लिटिल दिस थिंग। सो द टॉपिक इज स्लीप मैनेजमेंट एंड मेंटल एम्पावरमेंट, नो? तो देयर आर टू पार्ट्स। तो मेंटल एम्पावरमेंट का यहां, सिंस द टाइम यू हैव कम, यू हैव बीन, डिफरेंट स्पीकर्स हैव बीन टॉकिंग अबाउट मेडिटेशन, राजयोग मेडिटेशन। आप में से कितने जिन्होंने पहली बार राजयोग मेडिटेशन वर्ड सुना और समझा यहां आके, मतलब इससे पहले कभी कुछ आइडिया ही नहीं था? ओके, काफी लोग। अच्छा, आप लोग ने जिन्होंने पहली बार सुना, तो आपको क्या लगा अभी, मतलब मेडिटेशन अभी आपको क्या लगता है राजयोग मेडिटेशन क्या है और इससे क्या प्राप्ति होती है, या फॉर द मैटर मेडिटेशन से क्या प्राप्ति होती है? हाँ जी, शांति का अनुभव होता है। ओके, शक्ति का अनुभव होता है मेडिटेशन से? थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट एटलीस्ट इतना तो आइडिया है कि मेडिटेशन से कहीं ना कहीं शांति शक्ति मिलती है। तो इस पार्ट को भी थोड़ा सा मतलब एलाबोरेट करेंगे, क्योंकि जब हम बोलते हैं ना मेडिटेशन से शक्ति मिलती है, कोई प्रिंसिपल होना चाहिए ना, कैसे शक्ति मिलती है, तो उसका प्रिंसिपल समझेंगे। और इस सेशन में आपको क्यों समझा रहे, क्योंकि उसका स्लीप के साथ बहुत कनेक्शन है। तो वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट एंड द मोस्ट बेसिक क्वेश्चन कि हमें 24 घंटे में कितना सोना चाहिए? 6 to 8 hours। ओके, मैक्सिमम 7 hours। एज का भी फर्क है। तो जो आज हम जो स्लीप थ्योरी की बात करेंगे, ये जनरली 7 to 70 years, बहुत यंग एज और बहुत ओल्ड एज में लागू नहीं होती बिकॉज ऑफ वेरियस अदर रीजंस, बट एन एवरेज दिस थिंग। तो कितना सोना चाहिए किसी ने? अच्छा, अब सेकंड क्वेश्चन है, आप लोग जनरली कितना सो पाते हो 24 घंटे में? 6 घंटा, 8 hours, 6 hours, 7 hours। तो अगर किसी ने भी 5 घंटा बोला या 6 घंटा बोला या 7 घंटा बोला या 8 घंटा बोला, ऑल आंसर्स आर रॉन्ग। स्लीप थ्योरी सेज नोबडी स्लीप्स फॉर 5 hours, नोबडी स्लीप्स फॉर 6, नोबडी 7, नोबडी 8। Why I am saying that? That we will understand later. But all these answers are wrong. तो एक general ऐसी internet से कुछ animals का मैंने data निकाला कि ये लोग 24 hours में कितना सोते हैं। तो if you see the biggest land animals, elephant कितना सो रहा है? Giraffe कितना सो रहा? आपको क्या लगता है कि ये सबसे बड़े लैंड एनिमल्स है और इतना कम क्यों सो रहे? क्या रीजन हो सकता? दे रिक्वायर एनर्जी टू सर्वाइव, सो दे शुड स्लीप लेस। क्या समझे? दे रिक्वायर टू ईट मोर। सी दैट टू इज एप्लीकेबल फॉर लॉट ऑफ एनिमल्स ना। I am saying the biggest land animals and they are sleeping so less. That environment is applicable for a lot of other things. Sleep pattern, yeah, but what is this? Breeding pattern. Achha, nahin, eating, yes, but vegetarian to bahut sare janwar hai, dusre bhi, you know, sheep or goat or kitne sare janwar hai, no? Vegetarian to bahut bada class hai. डेफिनेटली वेजिटेरियन फूड, क्योंकि जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है और कई सारे ऐसे रीजन्स है, दे विल रिक्वायर लेस स्लीप, बट विद इन देम You know, this difference is there. So this is one question, we will leave it for the end. You know, first we will understand humans mein kya hota, then we will try to understand why this could be happening. So what do you see? A rock and a few drops of water falling on it. तो आपको क्या लगता है, रॉक को कुछ होगा? See, if you see rock is so strong and drop of water falling continuously, but drop of water में क्या ताकत है? तो ऐसे तो दोनों का कोई comparison नहीं और कुछ होना नहीं चाहिए, लेकिन if it is continuous and over a period of time, then there will be, वो उसको गड्ढा भी बना सकता है, क्रैक भी कर सकता है. सो दिस इज एन एग्जाम्पल एप्लीकेबल विथ स्लीप. एवरी डे वी स्लीप, देर इज अ पर्पज फॉर स्लीप, एंड इफ दैट पर्पज इज नॉट फुलफिल्ड, मतलब उसमें कमी है, अगर कुछ उसको समझो कुछ रिचार्ज करना है और उतना वो रिचार्ज नहीं कर पा रहा, आपको नहीं पता चलेगा और आप अप्रिशिएट भी नहीं करोगे, लेकिन वो एक्युमुलेट होता रहता और कहीं ना कहीं एक ट्रिगर पॉइंट होगा, एक ब्रेकिंग पॉइंट होगा और एक बहुत बड़े कोई व्याधि के रूप में सामने आएगा. इट इज एक्युमुलेटिव, दैट डेफिशिएंसी इज एक्युमुलेटिंग. तो बहुत जरूरी है. और क्यों मेजॉरिटी लोग इसके ऊपर अटेंशन नहीं देते? क्योंकि नॉर्मल में उसका इफेक्ट इतना जल्दी नहीं होता, तो हम लोग उसको अप्रिशिएट नहीं करते. बट आज फॉर सर्टन चेंजेस इन द एनवायरमेंट, सोसाइटी, टेक्नोलॉजी, दिस वन प्लेस स्लीप का एवरीबॉडी इज गेटिंग अफेक्टेड. एंड हमारे लाइफ में सबसे बड़ा टाइम डिवोट कर रहे थे क्योंकि बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी थी और उसके ऊपर आज खतरा होगा. मतलब अगर वो कुछ उसका एक पर्पज था समझो कुछ, उसको आपको एनर्जी देनी थी, वो एनर्जी नहीं दे पा रहा, एंड दैट विल हैव लॉट ऑफ रेमिफिकेशन, हाउ इट यू नो रिफ्लेक्ट्स इन वेरियस वेज, हेल्थ इश्यूज और अदर इश्यूज इट विल हैव, एंड इट इज अफेक्टिंग एवरीबडी अक्रॉस द बोर्ड. वी विल सी हाउ इट इज अफेक्टिंग एवरीबडी. सो इट हेल्थ के ऊपर जनरली यू नो एवरीबडी इज कॉन्शियस अबाउट हेल्थ, कि हमें हमारी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए. एक अच्छी हेल्थ के तीन पिलर्स बताए, फिजिकल फिटनेस, गुड न्यूट्रिशन एंड हेल्दी स्लीप. नाउ इफ यू सी द फर्स्ट एक्टिविटी, फिजिकल फिटनेस, उधर वो बोल रहे थे कि मैं रोज आई थिंक एक घंटा और सम किलोमीटर्स वॉक करते हैं. जनरली एक अवेयरनेस है कि फिजिकल फिटनेस होना चाहिए, पार्क्स में इफ यू सी मॉर्निंग में वॉक करते हैं. खाने के ऊपर बहुत अवेयरनेस है, तला हुआ नहीं खाना है, ज्यादा शुगर ज्यादा नहीं खानी है, फास्ट फूड ज्यादा नहीं खाना है. जनरली वी आर अवेयर एंड वी कॉन्शियसली टेक, अच्छा आज थोड़ा ज्यादा खा लिया, देन यू पुट अ फुल स्टॉप, नहीं नहीं आज के लिए बहुत हो गया, बहुत मीठा खा लिया, अभी नहीं करना. बट आप पूरे दिन में ऐसी कोई एक्टिविटी करते हो कि रात में मैं जब सोने के लिए जाऊं तो मुझे अच्छी नींद आए, तो कॉन्शियसली आप ऐसी कोई एक्टिविटी करते हो? पहले दो में हम कॉन्शियस होते हैं और हम जरूर कुछ ना कुछ अपना अटेंशन देते हैं, वी ट्राई टू डू सम कोर्स करेक्शन अगर हमको लग रहा है कि कुछ अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं. बट क्या नींद के लिए हम ऐसी कोई एक्टिविटी करते पूरे दिन में कॉन्शियसली कि मैं रात को जब मैं सोऊं तो मुझे अच्छी नींद आए? और अगर करते हैं तो क्या एक्टिविटी ऐसे करते? मेडिटेशन तो यहां आके अभी सीख रहे हैं आप. योग निंद्रा मतलब वॉक करने, स्लीप के लिए आप कर रहे हो? वॉक तो फिजिकल फिटनेस के लिए कर रहे हो ना? शवासन करते हैं. अच्छा चलो ठीक है, एक एक्टिविटी तो कर रहे. तो मेजोरिटी ऑफ अस टेक इट एज ग्रांटेड, डेली एक्टिविटी है रात को जाके सोना, बट वी कॉन्शियसली डोंट पुट एफोर्ट कि मैं रात को मुझे अच्छी नींद भी आनी चाहिए. वो स्लीप के साथ दो एस्पेक्ट है, क्वांटिटी एंड ए क्वालिटी, तो वी हैव टू अंडरस्टैंड बोथ. तो आगे चलकर हम क्वांटिटी, जो फर्स्ट क्वेश्चन था ना कितना सोना चाहिए, दैट आंसर वी विल सी, एंड ऑफकोर्स क्वालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्वांटिटी कितनी भी हो, क्वालिटी नहीं होगी तो इट विल नॉट बेनिफिट यू. तो एक छोटी सी रिडल के साथ है, बहुत सिंपल सा मैथ्स का रिडल है, प्लस माइनस है. बचपन में हम सब ने मैथ्स पढ़ी है और बहुत ही सिंपल से इसमें आप क्या आंसर होगा तो कोई भी कर सकता है. बचपन में सेकंड थर्ड स्टैंडर्ड तक भी मैथ्स पढ़ा है तो बड़े आराम से आप कर सकते हो. 19, 12, 11, 10 39, कितना 19, 17, 12, 22, 19, 13, 4, 7, 11, 13, 12, कितना 13, 5, 22, 16, 40, 40, 24, 12, 12. ओके चलो विल पुट ए फुल स्टॉप. हाँ एग्जाम में भी कोई क्वेश्चन आता है तो टाइम भी होता है, अनलिमिटेड टाइम नहीं होता, वहां तो एक ही चांस मिलता है, आपको बहुत चांस दिए. तो लेट अस सी दी आंसर. 19, 14, 13, वापस किसने बोला. तो फर्स्ट लाइन देखो, फर्स्ट लाइन को बड़े ध्यान से देखो. सो यू सी थ्री थ्री स्वॉर्ड्स, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ वन स्वॉर्ड, वन. ओके सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ वन गन, फाइव. ओके सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ वन स्कल, वन स्कल टू. ओके सो लास्ट लाइन में क्या है, टू प्लस फाइव मल्टीप्लाइड बाय फोर. When you have plus and when you have multiply, what do you do first? So what is that law called? Bodmas law. So 5 into 4 is what? 20 plus 2 is what? 22. So sabse pehle yahan se kisi ne bola. I think you had said. Unke liye taali bajao. And then somebody else said there. Acha, now my question is, it was a simple problem. Sufficient chance was given. The projector is also very clear. Picture was also clear. Majority of you have done it wrong despite several chances. Kya reason? Acha, jab aisa riddle aisa rakha hai to itna to malum hai ki bhai thoda sa humko attention se karna hai. So the problem was, the first problem which is affecting everybody today, हम चाहे न चाहे हमारी एकाग्रता की शक्ति कम हो रही है बिकॉज ऑफ सो मेनी डिस्ट्रैक्शन. एंड दिस हैज हैपेंड इन लास्ट 20-30 इयर्स, इस मीडिया का बूम, मोबाइल टेक्नोलॉजी 20-30 इयर्स में आया, एंड इट हैज अफेक्टेड एवरीबडी अक्रॉस द बोर्ड. यहां कोई है जो मोबाइल नहीं है जिसके पास? हर एक यूज कर रहा है ना, और यूज क्यों कर रहा है? क्योंकि यूजफुल चीज है, लेकिन उसका साइड इफेक्ट भी है. तो इट इज लाइक ना, आज हर एक का हेल्थ इफेक्ट होगा क्योंकि एयर पोल्यूटेड हो रही है. तो आप कहीं भी रहो आपको इफेक्ट तो होगा ना. तो ये टेक्नोलॉजी इतना प्रिवेलिंग है हर एक की लाइफ में, तो अगर उसका कुछ नेगेटिव इफेक्ट है वो हो रहा है, और अगर आप कोई कॉन्शियस एफर्ट नहीं डालेंगे तो वो आपको बहुत बुरी तरह से वो इफेक्ट करेगा. तो यू हैव टू कॉन्शियसली पुट एफर्ट. अभी हम लोग उधर दिल्ली में हेडक्वार्टर में, तो हमारे वहां स्मार्टफोन अलाउड नहीं, तो कुछ घंटे शांति हो जाती है, फोर्सफुल है लेकिन हो जाती. बट अदरवाइज व्यक्ति के पास है तो हर थोड़ा टाइम में देखता रहेगा. इट हैज बिकम हैबिटुअल. तो सबसे बड़ी चीज है बीइंग इन प्रेजेंट. हम लोग प्रेजेंट में नहीं. अभी वहां भी क्या था, एक लाइन थी, आपने एक लाइन को पूरा नहीं देखा, आपका माइंड दूसरी लाइन में जंप कर गया, दूसरा भी पूरा नहीं देखा, तीसरी लाइन में जंप कर गया. वरना अगर आप स्टेप बाय स्टेप जाते जिस तरह से दिखाया, इट वॉज अ वेरी सिंपल एक्सरसाइज, एनीबडी कुड हैव डन इट. एंड सेकेंड थिंग, बिकॉज द माइंड इज फास्ट, इट जम्प्स टू कंक्लूजन. तीन तीन तलवार थी, लास्ट में कितने तलवार थी? चार. लेकिन बहुत सारे लोगों ने उसको प्लस माइनस था, लास्ट में एक मल्टीप्लाई था, कईयों ने उसको प्लस समझा. पिक्चर में कोई प्रॉब्लम नहीं थी? कोई प्रॉब्लम थी पिक्चर में? पिक्चर वॉज वेरी क्लियर, है ना. मैं एक घर के सामने से जा रहा था, तो घर के मकान के मालिक में ना, उसने अपने बेल के नीचे एक नोटिस लगाया हुआ था, तो उसमें उसने क्या लिखा था देखो, कृपया घंटी मारने के बाद प्रतीक्षा करें, खोलने वाला चल कर आएगा, उड़कर नहीं. उसने ऐसा क्यों लिखा? पेशेंस नहीं है ना, सब चीज फास्ट है तो. आज हमको सब चीज फास्ट अच्छा लगता, फास्ट गाड़ी होनी चाहिए, डाटा फास्ट होना चाहिए, सब चीज फास्ट चलेगा, लेकिन माइंड फास्ट इज द मोस्ट डेंजरस थिंग. मेडिटेशन में माइंड को स्लो करते हैं, और उसका रिवर्स, द अदर एक्सट्रीम इज व्हेन समबडी गोस, माइंड ऑफ हो जाता है तो उसका माइंड बहुत फास्ट चलने लगता है ना, जिसको हम लोग कभी कभी बोलते हैं ही इज बिकमिंग मैड, एक्चुअली द माइंड इज ट्रैवलिंग वेरी फास्ट. सो हम लोग किस तरफ जा रहे हैं? फास्ट की तरफ जा रहे हैं. And this exercise was very simple to illustrate that don't be under the illusion ki mujhe kuch nahi ho raha, everybody is getting affected. ओके, तो स्लीप के बारे में, व्हेन वी स्लीप देर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, है ना, कई सारे चीजें होती है, क्या क्या प्रॉब्लम होती है जब सोने में होता है। तो कई बार ऐसे होता है, कईयों को क्या होता है कि नींद के समय तकिया चाहिए होता, तकिया के बिना नींद नहीं आती। होते हैं कई ऐसे जिनको तकिया नहीं है तो नींद नहीं आएगी। अच्छा, कईयों को तकिया भी थोड़ा सा मोटा चाहिए होता है, एकदम पतला सा, नहीं ट्रेन में जाते हैं ना राजधानी में, इतना पतला सा होता है, तकिया है नहीं है पता भी नहीं चलता। अच्छा, कई होते हैं जिनको अपने घर में नींद आएगी, कहीं और गए तो नहीं होगी, बेडरूम में है तो ठीक है, आगे एक दिन बोला नहीं डाइनिंग रूम में सो जाओ, एक दिन बोला सोफे पे सो जाओ, थोड़ा सा ऊपर नीचे तो नहीं सो पाएंगे। तो हम लोग इन लोगों को देखते हैं, इनके सामने भी यही चैलेंज है, इसके पास पिल्लो नहीं है। इसके पास बेड नहीं है। आपको क्या लगता है, ये सो रहे, इसको बेडरूम नहीं है, तो आपको क्या लगता है सो रहे या गहरी नींद में सो रहे? कई होते हैं जो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गए ना तो उनको नींद नहीं आएगी। अच्छा, तो ये सब सो भी रहे हैं और गहरी नींद में सो रहे हैं, तो कैसे सो पा रहे हैं? कैसे सो पा रहे हैं? चिंताओं से मुक्त, बॉडी फ्लेक्सिबल है। अच्छा, कई होते हैं हमारे वो जिमनास्ट और योगा वाले पार्टी, उनका भी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है लेकिन उनको ऐसे नींद नहीं आती, स्ट्रेस फ्री है। अच्छा, तो सबसे खुशी की बात है कि हम लोग भी सब बचपन से बड़े हुए ना, तो समवेयर वी हैड दिस आर्ट ऑफ स्लीपिंग एंड वी हैव लॉस्ट इट, और क्योंकि हमारी ही एबिलिटी थी तो प्रोबेबली विद ए लिटिल एफर्ट वी कैन रीगेन इट, क्योंकि किसी समय हमारे पास एबिलिटी थी, तो वी विल सी हाउ टू रीगेन इट। तो अभी इफ यू स्टार्ट एंड इफ सम एक छोटा बच्चा भी आपसे पूछे कि यू नो नींद क्या होती है, अंकल समझाओ नींद क्या होती है, आंटी जी बताओ नींद क्या होती है, तो आप कैसे एक्सप्लेन करोगे नींद क्या होती है? वॉट इज स्लीप? छोटे बच्चे को कैसे समझाओगे? अच्छा, मैं ऐसा बोलूं मैंने आंख बंद कर ली, इज इट स्लीप? नहीं। तो स्लीप क्या है? तो मैं उसको आपको एक एग्जाम्पल से बताता हूं, आप उसमें बताना। जैसे कि स्लीप में वैसे से जब व्यक्ति सोता है तो उसको बाहर का नहीं मालूम होता कुछ, चोर चोरी कब करता है? जब व्यक्ति सो रहा है, बिकॉज ही इज नॉट अवेयर अबाउट आउट। एक पेशेंट है, उसका ऑपरेशन होने जा रहा है, तो डॉक्टर उसको बेहोश कर देता है। एक पर्सन इज स्लीपिंग, दूसरा एक पर्सन जो सो रहा है, जो नॉर्मल सो रहा है, और एक पर्सन जिसको डॉक्टर ने बेहोश कर दिया, उसको भी नहीं मालूम बाहर का क्या। क्या दोनों स्टेज सेम है? क्या डिफरेंस है दोनों में? एक को जगाया जा सकता है, दूसरे को नहीं जगाया जा सकता। गुड, मतलब एक को थोड़ा सा हिलाया तो जग जाएगा, है ना। हाँ, एक सोने के बाद फ्रेश फील होगा, शायद जिसको बेहोश किया वो, उसके तो जनरली टाइम लैप्स जैसा हो जाता है, 2 घंटा 10 घंटा, यू विल नॉट इवन रियलाइज क्या होता। और कोई डिफरेंस? मतलब ये सोना और ये बेहोश होना, एनी डिफरेंस? कॉन्शियसनेस नहीं है, ऐसा बोले क्या बोलेंगे? ओके, सो उसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि जब व्यक्ति सोता है तो उसको सपने आते हैं, लेकिन एक व्यक्ति जिसको बेहोश किया है उसको सपने आएंगे। सो द बिगेस्ट डिफरेंस इज व्हेन ए पर्सन इज स्लीपिंग, ही इज नॉट अवेयर अबाउट द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, बट इनसाइड हिज माइंड इज going, मतलब माइंड इज नॉट टू स्लीप, माइंड इज वेरिंग इन डिफरेंट स्टेजेस। सपना आना मतलब माइंड चल रहा है ना उसका, और व्यक्ति बेहोश है तो उसके लिए बाहर से भी सब साइलेंट, अंदर भी साइलेंट, उसका माइंड भी नहीं चल रहा। तो एक्चुअली स्लीप को समझना मतलब व्यक्ति जब सो रहा है तो उसका माइंड कैसे अलग अलग स्टेजेस में चेंज हो रहा है। When we understand that, we understand what is happening in sleep. And उसको समझने के लिए आजकल कई ऐसे यंत्र बने जिससे आप वो समझ सकते हो, तो हम उन यंत्रों को देखेंगे। तो इसी को बताया, स्लीप कैन बी डिफाइंड एज ए स्टेट ऑफ अनकॉन्शियसनेस फ्रॉम विच ए पर्सन कैन बी अराउज्ड। वो भी एक बेहोशी की हालत है लेकिन उसको जगाया जा सकता है। जैसे वो सो रहा है, आपने थोड़ा सा हिलाया तो हो सकता नहीं जागे, लेकिन बहुत ज्यादा हिलाएंगे तो जाग जाएगा। थोड़ा सा स्मेल चेंज हो उसको नहीं पता चलेगा, थोड़ी सी लाइट चेंज हो शायद नहीं पता चलेगा, थोड़ा साउंड चेंज हो नहीं पता चलेगा, लेकिन ज्यादा होगा तो वो जाग जाएगा। सो इसी को हम लोग दूसरी भाषा में बोलते हैं पार्शियल डिटैचमेंट और विड्रॉल फ्रॉम सेंसेस। जो हमारी पांच कर्मेंद्रियां हैं इससे हम डिटैच होते हैं। बट पार्शियल क्यों बोला, कि थोड़ा सा ज्यादा अगर पुश करोगे तो वो जाग जाएगा। नाउ द होल वर्ड दिस डिटैचमेंट, दिस इज द की ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ स्लीप, डिटैच होना। तो यहां जो भी आपको नॉलेज जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं, चाहे कोई भी स्पीकर हो, फाउंडेशन में हमारे पास से नॉलेज कहां से आई, तो हमारे यहां एवरीडे मॉर्निंग एक, आप लोगों ने देखा होगा ना, इधर मॉर्निंग क्लास होती है, तो हम उसको मुरली बोलते हैं। तो मुरली में जो गॉडली वर्शंस में बहुत सारी बातें होती, तो उसमें एक जगह मैंने ये पढ़ा था, तो बाबा बोलते हैं यहां का सोना क्या है, सोना अर्थात कर्म से डिटैच हो जाना। तो आप कर्मिंद्रियों से डिटैच हो जाते हो, अशरीरी बनना अर्थात सो जाना, तो डिटैच होना। नाउ आई विल एक्सप्लेन, स्लीप का प्राइमरी पर्पस रिचार्ज और रिफ्रेशमेंट है, दैट कैन हैपन ओनली इफ यू हैव द एबिलिटी टू डिटैच फ्रॉम दिस फाइव सेंसेस फॉर अ ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम। इफ फॉर सम रीजन यू आर नॉट एबल टू डिटैच, आप कितने भी घंटे सो लो आपको नींद से कोई फायदा होने नहीं वाला। एक सिंपल सा एग्जाम्पल है, अभी आपको वापस जाना है, आपके समझो रिजर्वेशन नहीं है, आपको बस में ट्रैवल करना है, पूरी नाइट ट्रैवल कर रहे हो, बस में बैठे हो, आंख बंद कर सो रहे हो, लेकिन बस में कितनी डिस्टर्बेंस है, हर थोड़ी देर में कोई आ रहा है, कुछ आवाज हो रही है, और आप सोने की कोशिश कर रहे हो, फिर जाकर सोने की कोशिश, मतलब यू आर नॉट एबल टू स्लीप, यू आर नॉट एबल टू डिटैच फ्रॉम दिस फाइव। अब 8-9 घंटा आप सोए क्योंकि आंख बंद करके बैठे थे, घर में जाओगे सबसे पहले क्या करोगे, सोएंगे, क्योंकि रात भर आप सोए लेकिन उसका फायदा कुछ नहीं हो। अनलेस यू डिटैच। अब मैं आपको वापस अपने बेसिक क्वेश्चन पे आता हूं। यहां जब आपको मेडिटेशन सिखाते हैं तो मेडिटेशन में सबसे पहले आपको क्या सिखाया, कुछ टाइम के लिए अपने को एक पॉइंट ऑफ लाइट समझो और इन कर्मेंद्रियों से अपने को डिटैच करो। द प्रिंसिपल इज सेम, इफ यू कैन डिटैच फ्रॉम दिस फाइव कर्मेंद्रिया फॉर अ ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम यू कैन रिचार्ज योरसेल्फ। If you cannot detach, you cannot recharge. The principle is of detachment. कुछ टाइम के लिए आपको, वो कैसे होता है, पहले आपको समझ होती है, फिर थोड़ा प्रैक्टिस होती है, प्रैक्टिस से आप ऑटोमेटिकली एबिलिटी होती है, मेडिटेशन में थोड़ी देर बैठे आप कर्मियों से डिटैच हो सकते हो। इसीलिए पूरे दिन में आप कभी भी थोड़ी देर के लिए भी आप अपने को डिटैच कर सकते हो, मेडिटेशन के द्वारा आप डिटैच कर सकते हो, ये एबिलिटी है। तो इससे कनेक्टेड मैं एक दो चीजें बताऊंगा। जब आप मेडिटेशन करते हो तो मेडिटेशन में ऐसे कई एस्पेक्ट है, लेकिन मुख्य उसमें दो ही एस्पेक्ट है, एक सेल्फ के बारे में जानना और दूसरा जो सुप्रीम के बारे में, क्योंकि एनर्जी कहीं से ले रहे हो, है ना, और उसके बारे में आपको यहां अलग अलग क्लासेस में बताया होगा। लेकिन इन दोनों को आपको थोड़ा सा ना इन दोनों के विषयों के ऊपर कन्विक्शन होना चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जब हम लोग एकेडमी में थे तो नेवी में क्या स्विमिंग कंपलसरी होता, तो स्विमिंग तो सबको सीखना ही होता। तो मेरा एक कोर्समेट था, हिमाचल का था, तो पहाड़ी था, तो पहाड़ी वालों के क्या बॉडी बहुत फिट होती है, क्योंकि उन लोग फिजिकली बहुत फिट होते हैं, तो उसको भागने दौड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन स्विमिंग जहां होती तो पानी से डरता था, स्विमिंग जीरो, बट एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, फिर एक टर्म के बाद यू हैव टू पास, दैट इज अ कंपलसरी। तो एक बार जो वेकेशन होती है टर्म्स के बीच में, तो मेरे पास आया, बोला नहीं शिव तू मेरे को स्विमिंग सिखा, क्योंकि उधर उस्ताद सिखाएगा तो कैसे सिखाएगा, वो पानी पिला पिला के सिखाएगा, यहां तो कोर्समेट कैसे सिखाएगा, भाई रिक्वेस्ट करेगा ऐसे करो ऐसे करो। तो हम लोग स्विमिंग पूल जाते थे, सिखाता था मैं उसको। तो कुछ टाइम के बाद मैंने देखा कि जो मैं फिजिकल एक्टिविटी कर रहा हूं, हाथ जिस तरह चलाना पाऊं जैसा, ही वॉज ऑल्सो डूइंग एग्जैक्टली द सेम थिंग, बट मैं तैर रहा था वो डूब रहा था। इवन दो अवर फिजिकल एक्टिविटी वॉज आइडेंटिकल, बट फिर भी मैं तैर रहा था और डूब रहा था, क्यों? कहीं ना कहीं उसको वो कन्विक्शन नहीं था, मुझे कन्विक्शन था भाई मेरे को स्विमिंग आती है, आई वाज इजीली विद द सेम एक्टिविटी ही कुड नॉट डिराइव द बेनिफिट बिकॉज ही वाज नॉट कन्विंस्ड। तो मेडिटेशन में भी कोई बैठता है और थोड़ी देर भी अपने आप को डिटैच होने की कोशिश करता है, फर्स्ट स्टेप अपने को सोल कॉन्शियस बनाता है, लेकिन मुझे अगर आत्मा में विश्वास ही नहीं है कि मैं एक्चुअल में इस बॉडी से सेपरेट एक आइडेंटिटी हूं और मुझे उस सुप्रीम से कनेक्ट करना है, तो मुझे उतना फायदा नहीं होगा। कन्विक्शन इज द फर्स्ट स्टेप। अब कन्विंस कैसे होंगे आप? तो कन्विंस होने का तरीका कि पहले तो आपको नॉलेज, खुद अपना एक लॉजिकल माइंड होता है ना, आप कोई आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा तो आप तर्क वितर्क से देखते हो कि ये सही है या गलत, और दूसरा है एक्सपीरियंस, अनुभव। अगर मुझे मेडिटेशन में शांति का अनुभव होता है तो फिर मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, आपको अनुभव हुआ, आप बोलेंगे भाई इस प्रोसेस से मुझे अनुभव होता, तो फिर और क्या कन्विक्शन चाहिए। अब प्रॉब्लम यह है कि हम लोग यहां आध्यात्मिकता में आपको बहुत सारी चीजें, आत्मा के बारे में भी बताया होगा, सुप्रीम के बारे में भी बताया होगा, लेकिन कन्विक्शन में एक प्रॉब्लम कहां आती है कि हम सब मेजॉरिटी एक साइंस के बैकग्राउंड से होते हैं और साइंस में इन कंसेप्ट्स पे कभी बात ही नहीं हुई, तो फिर कहीं ना कहीं वो कन्विक्शन में वो एक थोड़ी सी रुकावट रहती है कि है तो अच्छा लेकिन पूरा तरह से, क्योंकि अब तक तो मैंने कभी सीखा नहीं, कभी मेरे को ऐसा पढ़ाया नहीं, है ना। तो इसलिए मैं ये थोड़ा सा इसको टच करूंगा कि साइंस के हिसाब से ये एक अलग से सब्जेक्ट है, तो मैं यहां बस इसको थोड़ा सा टच कर रहा हूं जस्ट फॉर यू नो कन्विक्शन को, आपको थोड़ा उसको स्ट्रेंथन करने के लिए। तो ऐसा नहीं है, साइंस इज ए कंटिन्यूस प्रोग्रेस, मनुष्य की उपज है ना, तो कंटिन्यूस इंप्रूव होता रहता है। ऐसा नहीं कि साइंस इटसेल्फ इज सम गॉस्पेल ट्रुथ, है ना। एक समय बोलते थे कि एटम सबसे छोटा है, बस खत्म, अथॉरिटी। फिर क्या हुआ, वो इलेक्ट्रॉन निकल गया, प्रोटॉन, बोला नहीं नहीं अरे ये नहीं है, दिस इज नॉट द स्मॉलेस्ट, दिस इज द स्मॉलेस्ट, इट इज अ प्रोग्रेसिंग थिंग। तो बहुत ये तीन चार चीजें हैं जो साइंस इस फील्ड में काम कर रहा है। ऑब्जर्वेशन, बहुत सारे बच्चे हैं बहुत स्पेशल स्किल से पैदा होते, है ना। कई सारे एग्जांपल है, ये छोटी बच्ची है ना, ये 2 साल की, ऑस्ट्रेलिया का केस है, उसके घर में कोई पेंटर नहीं, कोई ड्राइंग करता नहीं, कुछ नहीं, और ये 2 साल की बच्ची है, इतना सुंदर पेंटिंग है, इसकी एग्जीबिशन रखी थी इसके फादर ने, तो कई लोग खरीदने आए, और जो एक कोई वापस एग्जीबिशन रखना चाहता था, बोलता है उसको पता नहीं था कौन है इसका पेंटर, तो बोला कि उस व्यक्ति को बोला कि आप ये पेंटिंग ना, मैं एक और एग्जीबिशन रखना चाहता हूं और बहुत अच्छी है बहुत, तो आप वो और एक सेट पेंटिंग्स का लेकर आओ। तो जो आदमी फादर था वो बोलता मेरे को सोचना पड़ेगा मैं ला सकता हूँ, बोला नहीं नहीं मैं बहुत अच्छा पैसा दूंगा ये दूंगा, बोलता नहीं फिर भी मेरे को पूछना पड़ेगा, मतलब पेंटिंग्स कर सकते हैं नहीं कर सकते, बोला जब इतना पैसा दे रहे हैं तो आपको क्या फिक्र है। फिर वो फाइनली बोलता है कि भाई वो मेरी 2 साल की बच्ची है, उसका मूड होगा तो बनाएगी। यू आर शॉक्ड, बोला ऐसी पेंटिंग 2 साल की बच्ची कैसे बना सकती। तो देर आर सो मेनी स्किल्स, समटाइम्स ए चाइल्ड जिसका एनवायरनमेंट से नहीं है, पेरेंट्स का नहीं है, ना आप जीन्स के ऊपर बोल सकते हो ना एनवायरनमेंट, तो कहीं ना कहीं वो संस्कार कहीं से पास से ला रहे है ना। दूसरा है इंडिविजुअल्स हैव डिफरेंट काइंड ऑफ फोबिया और टेम्परमेंट, है ना। कई होते हैं बचपन से किसी को पानी का डर है, किसी को किस चीज का डर है, किसी को हाइट्स का डर है ना, तो ये कहीं से वो संस्कार पास से लेकर आ रही है। दूसरा है मेडिकल साइंस में बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जहां व्यक्ति को क्लिनिकली डेड बोलते हैं, देन थोड़े टाइम के बाद तो रिवाइव हो जाता, तो ये नियर डेथ एक्सपीरियंस, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, इसके ऊपर भी बहुत सारे डॉक्यूमेंटेड एविडेंस है कि द लिविंग बींग इज डिफरेंट फ्रॉम द फिजिकल बॉडी। तीसरा है रिसर्च, ये सबके ऊपर बहुत सारे एग्जाम्पल्स है बट मैं उनको अभी नहीं टच कर रहा। डॉक्टर आयन स्टीवनसन, ही इज कंसिडर्ड द यू नो फादर ऑफ स्टडी ऑन री इनकारनेशन। 1960s से इसने थाउजेंड्स ऑफ केस को स्टडी किया और जिस भी केस में उसको थोड़ा सा भी डाउट हुआ ना, उसको उसने साइड में रख दिया, जो एकदम जेन्यून केस थे उसको उसने डॉक्यूमेंट किया, और ऐसे उसने 2500 केसेस डॉक्यूमेंट किए। एंड द सरप्राइजिंग थिंग इज इन 2500 केसेस, इन एनी एवरी केस द पर्सनैलिटी व्हेन इट टॉक्स अबाउट इट्स पास्ट लाइफ, इट ऑलवेज टॉक्स अबाउट अ ह्यूमन लाइफ। एक भी ऐसा केस नहीं था जिसमें उसने बोला कि मैं कोई और एनिमल था या बर्ड प्लांट या कुछ नहीं, जो हम लोग कभी कभी सुनते हैं ना कई सारी योनिया में, ये कोई भी नहीं था। 2500 केस और बहुत जबरदस्त केसेस, कई चीजें जो हम लोग कर्म फिलोसफी में बोलते हैं ना, हम अच्छा नहीं करेंगे तो हमको अच्छा नहीं मिलेगा, बोलते अगला जन्म किसने देखा है देखा, तो उसमें जिसमें जिसने रिमेंबर किया ना, तो उसके बड़े अच्छे एक अलग बुक है 20 केसेस ऑफ यूनिक री इनकारनेशन, तो उसमें आपको समझ आएगा कि कर्म फिलोसफी कैसे फॉलोअप करती है, कैसे कैचअप करती है। सो 2500 केसेस। हिप्नोटिक रिग्रेशन, ये भी एक मेडिकल साइंस में एक टेक्निक यूज करते हैं वेस्टर्न कंट्रीज में, कोई पेशेंट को किसी तरह का स्ट्रेस है, ट्रॉमा है, तो उसको हिप्नोटिक रिग्रेशन पास्ट में ले जाते हैं, ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इज द रीजन एंड ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम। इसमें कई केसेस होते हैं जिसमें वो पास्ट लाइफ में चले जाते हैं. तो एक बहुत डॉक्टर हेलेन वैनबैक की एक बहुत अच्छी बुक है, शायद मेनी मेनी लाइव्स मेनी मास्टर्स, किसी ने पढ़ी हो तो, नहीं पढ़ी हो तो पढ़ना. उसमें वो सब्जेक्ट को 40 ऐसे उसके पास्ट के बर्थ्स के वो अपने एक्सपीरियंस सुनाते. तो दिस इज आई एम जस्ट सेइंग ऐसे कई सारे केसेस है जिसमें वो पास्ट लाइफ का बताते हैं. एंड ऑफकोर्स कॉमन सेंस. हाँ जी. नहीं, स्पीशीज मतलब यस, ह्यूमन बींग के सोल्स है तो इट इज ह्यूमन सोल्स. या करेक्ट, इट गोस इन टू इट्स ओन स्पीशीज. द सिंपल एग्जाम्पल इज आम का बीज डालेंगे तो आम का ही पेड़ आएगा, उसमें संस्कार उसके हैं. एंड देर इज नो रीजन फॉर इट टू गो इन डिफरेंट स्पीसीज. एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग है कि जैसे हम लोग बोलते हैं ना, मैं गलत काम करूंगा तो मैं ऐसा जन्म लूंगा, ऐसा जन्म दुख भोगने के लिए. दुख या सुख भोगने के लिए मनुष्य का जन्म काफी नहीं है. आज मनुष्य के जन्म में कितना दुख है. तो आई डोंट हैव टू यू नो गो टू एन डिफरेंट स्पीशीज फॉर दैट. तो ह्यूमन सोल्स टेक ओनली ह्यूमन बर्थ. कॉमन सेंस, अभी कॉमन सेंस क्या बोलता है, ये ग्लास है ना, दिस ग्लास विल नॉट मूव. आज ये ग्लास इधर क्यों ऐसे खड़ा हुआ है, रखा हुआ है, तो एक ही जगह पे क्यों है, बिकॉज ऑफ वेरियस फोर्सेस, ग्रेविटी है, ये है. एक्चुअली तो एवरी फिजिकल बॉडी का दूसरे के साथ अट्रैक्शन है, बट इट इज दैट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ दैट डिस्टेंस. तो कोई स्टार है तो उसका कितना डिस्टेंस है तो नेग्लिजिबल उसका अट्रैक्शन होगा. अब ये ग्लास हिलेगी कब, अनलेस सम एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस इज देयर, हिलेगी नहीं. अपने आप हिल सकती है, नहीं हिले, कोई फिजिकल लॉस है. अब मैं एक व्यक्ति को इधर खड़ा कर दूं ना, कर्नल भट्टाचार्य अगर इधर खड़े हो गए, नाउ ही इज ऑल्सो ए फिजिकल बॉडी, उसके ऊपर भी सारे फोर्सेस है, ही शुड ऑल्सो नॉट मूव एनीवेयर ना. फिजिकल लॉस है भाई, जब तक कोई चीज डिस्टर्ब नहीं करेगी इट कैनॉट मूव. लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं कंटिन्यूसली टू रिमेन इन दैट स्टेट. बट कर्नल भट्टाचार्य की विश हुई कि मैं लेफ्ट जाऊं तो लेफ्ट जा सकता हूं, राइट जाऊं तो राइट. ही इज डिफाइंग द फिजिकल लॉस. मतलब देयर इज समथिंग इन इट, इन दैट फिजिकल बॉडी विच इज नॉट फिजिकल एंड इज नॉट फॉलोइंग दोज फिजिकल लॉस. नहीं तो जैसे वो कोई व्यक्ति डेथ क्या बोलते हैं, सोल हैज लेफ्ट द बॉडी, उसके बाद मुर्दा हो गया, उसके बाद ऑल लॉस विल अप्लाई. फिर वो हिलेगा, कुछ भी नहीं हिल सकता, फिर चार लोग को उसको उठाना पड़ता. फिजिकल लॉस को डिफाई कर रहा, समथिंग इन दैट इंडिविजुअल इज डिफाइन दोज फिजिकल लॉस. तो एक कॉमन सेंस है कि शरीर और शरीर में रहने वाली चेतन शक्ति इट इज अ मेटाफिजिकल थिंग, एंड जो मन बुद्धि संस्कार वो उसकी शक्ति. अब इससे भी बड़ा चाहे देखो, आत्मा या सेल्फ के बारे में समझना फिर भी इजी है, लेकिन गॉड के बारे में समझना वो, क्योंकि गॉड के बारे में बहुत सारी मान्यता है, बहुत सारे ये, तो हम गॉड को कैसे समझे, क्योंकि एनर्जी कहां से ले रहे हैं, कनेक्शन मेडिटेशन में सुप्रीम से ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो सुप्रीम के बारे में मेरे को कन्विक्शन होना चाहिए ना. अब उसके बारे में इतनी सारी मान्यता है तो हाउ डू आई गेट कन्विंस्ड. तो देखो तीन इंपॉर्टेंट क्वालिटी जो गॉड के बारे में बोलते हैं. सबसे पहले बोलते हैं इज ऑल नॉलेजफुल, मतलब सब कुछ मालूम है, पूरा ज्ञान. अब उसको हमने कैसे एसोसिएट कर दिया, इज ओमनी प्रेजेंट. ओमनी प्रेजेंट सब जगह, इसलिए उसको सब कुछ मालूम है, बट दैट इज नॉट नेसेसरी ना. आज मैं बहुत जगह का इंफॉर्मेशन एक छोटे से डिवाइस में स्टोर करके एक जगह रख सकता हूं. टू हैव द कंप्लीट नॉलेज इट हैज नीड नॉट बी स्प्रेड आउट एवरीवेयर, इट कैन बी एट वन प्लेस, द एंटायर नॉलेज कैन बी एट वन प्लेस. एंड साइंस इज शोइंग कि छोटा छोटा होता जाता है लेकिन डाटा उसमें बड़ा होता है, कैपेसिटी बढ़ती जाती. टू हैव कंप्लीट नॉलेज ए पर्सन नीड नॉट बी ओमनी प्रेजेंट. सेकेंड, ऑल पावरफुल. बट फाइनली एक जगह पे स्टोर हो सकता है ना, नहीं उसका मैकेनिज्म अलग है ना. बट वॉट वी से जब हम लोग गॉड के लिए बोलते हैं उनको सब कुछ मालूम है, ऐसा दैट्स द जनरल दिस थिंग कि ही इज ऑल नॉलेजफुल. एंड समहाउ वी हाउ डू आई अंडरस्टैंड दैट, हम सोचते हैं ओमनी प्रेजेंट है इसलिए उसको सब कुछ मालूम है. दैट नीड नॉट बी. ऑल पावरफुल मतलब बड़ा चीज है तो बहुत शक्तिशाली चीज है. आज बोलो आज के टाइम में सबसे पावरफुल चीज क्या है, एटम बॉम्ब. एंड एटम सबसे, तो किसी चीज को पावरफुल होने के लिए बड़ा होने की जरूरत नहीं. बट द फाइनल थिंग इज गॉड के लिए एक एबिलिटी परफेक्ट, यू कैन नॉट आस्क, देर शुड बी नो क्वेश्चंस अबाउट दैट, इट शुड बी एक्सेप्टेबल टू एवरीबॉडी, परफेक्शन. अभी परफेक्ट कैसे होगा, क्या चीज हो सकती है जो कि परफेक्ट हो. तो यहां हमको क्या बताते हैं गॉड के बारे में, आपको क्या बताया. देखो सबसे सिंपल चीज है, अगर मैंने अपने आप को पहचाना एक बकरी का पिता बकरी होगा, शेर का पिता शेर होगा, पक्षी का पिता पक्षी होगा। तो अगर मेरे को समझ में आता है कि मैं एक पॉइंट ऑफ लाइट हूं, तो मेरा पिता भी पॉइंट ऑफ लाइट होगा ना। क्वालिटीज कैन डिफर, क्वालिटीज डेफिनेटली बाप और बच्चे में डिफर हो सकता है, बट द शेप अपीयरेंस कैन बी सेम ना। तो दैट इज द सिंपलेस्ट वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग, बट साइंस उसको बड़े अच्छी तरह से समझाता है। हु इज परफेक्ट, अगर इनमें से कोई भी हो, है ना, इज एक रैंडम एग्जाम्पल, तो मैं बोलूंगा अरे कोई छोटा व्यक्ति है तो मैं बोलूँ नहीं, लंबा क्यों नहीं है, गोरा है तो मैं बोलूँ काला क्यों नहीं है, एशियन है मैं बोलूँ अफ्रीकन क्यों नहीं है, रिच है मैं बोलूँ पुअर क्यों नहीं है। देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस, अगर इनमें से किसी को भी हम ये टाइटल दें परफेक्ट, मतलब देयर शुड बी नो क्वेश्चंस। अच्छा, अगर हम जो डिवाइन फादर्स के लिए बोलेंगे तो इसके ऊपर भी मतभेद होगा, एक मानेगा तो दूसरा नहीं मानेगा, दूसरा मानेगा तो तीसरा नहीं मानेगा। तो साइंस गिव्स यू द परफेक्ट सॉल्यूशन, एंड व्हाट डज साइंस से कि द सुप्रीम इज द पॉइंट, पॉइंट ऑफ लाइट। अच्छा, पॉइंट का डेफिनेशन क्या होता, ए पॉइंट हैज नो विड्थ नो लेंथ नो हाइट येट इट एग्जिस्ट। अब आप बोल सकते हैं कि छोटा है बड़ा है मोटा है पतला है काला है गोरा है, एक्चुअली साइंस इज गिविंग द परफेक्ट सॉल्यूशन कि परफेक्शन क्या होगा, पॉइंट। लेकिन स्पिरिचुअलिटी में हम उसको एक शब्द थोड़ा सा क्लैरिफाई करते हैं, पॉइंट ऑफ डिवाइन लाइट, क्योंकि जो फिजिकल लाइट है वो फिर फिजिकल लॉस में आ जाएगी, डिवाइन लाइट है इसलिए वो नहीं बोलो। ओके, नाउ व्हाई आई टच दिस टू थिंग्स, यू नो अभी तक आपने आत्मा और परमात्मा का सुना होगा अलग तरीके से, बट कहीं ना कहीं एक साइंस के कारण अगर कोई ब्लॉकेज है ना, गिरीश भाई बोल रहे थे कई सारे ब्लॉकेज होता है, तो ऐसा नहीं है। अगर आप साइंस को भी ध्यान से देखेंगे तो इट विल लीड यू टूवर्ड्स दिस एंड इट विल कन्विंस यू। ओनली थिंग, ओनली रिक्वायरमेंट इज यू शुड हैव एन ओपन माइंड, पहले से क्लोज्ड है मेरे कुछ कंसेप्ट है, मैं लेफ्ट राइट कुछ और मैं सुनना ही नहीं चाहता, देन नोबडी कैन डू एनीथिंग। यू हैव एन ओपन माइंड देन डेफिनेटली वेरी इजी। एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट था, हमारे पास उतना टाइम नहीं था, नहीं तो साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी का एक पूरा डेढ़ घंटे का सेशन था। सो इट टॉक्स अबाउट कर्म, इट टॉक्स अबाउट टाइम, हाउ इट इज साइक्लिक एंड ऑल दोस एस्पेक्ट्स। सो नाउ वील कम बैक टू दिस अवर ओरिजिनल दिस थिंग, बिकॉज मेंटल एम्पावरमेंट से ये दो चीजें कनेक्टेड थी। अब स्लीप से मैंने आई सेड इनिशियली वी सेड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, एंड दैट इज वाई इन्वेस्टिंग सो मच टाइम। नाउ माई क्वेश्चन इज वाई इज इट इंपॉर्टेंट। तो कई लोगों ने बोला कुछ रिचार्ज रिफ्रेशमेंट, दैट इज वॉट द आंसर, बट माई क्वेश्चन इज स्लीप इज इंपॉर्टेंट फॉर द बॉडी और स्लीप इज इंपॉर्टेंट फॉर द माइंड। ओके, इफ इट इज फॉर बोथ शुड आई से 50-50%, 60-40%, 70-30%, और है तो किसके फेवर में, माइंड के फेवर में 60-40 70-30। तो स्लीप थ्योरी सेज द प्राइमरी पर्पस ऑफ स्लीप इज टू रिचार्ज द माइंड, बॉडी के लिए भी है लेकिन द प्राइमरी पर्पस इज टू रिचार्ज द माइंड। इसको कैसे समझे, मतलब स्लीप इज रेस्ट रिफ्रेश रीजनरेट। हाँ जी, ठीक है। एक्चुअली स्लीप का एक सब्जेक्ट ऐसा है ना कि आइसोलेशन में साइंस भी पूरा एक्सप्लेन नहीं कर सकता और स्पिरिचुअलिटी भी आइसोलेशन में नहीं कर सकता, बिकॉज इट इज अफेक्टिंग बोथ। तो दोनों का जिसको थोड़ा नॉलेज है तो यू कैन अराइव एट अ मच बेटर पिक्चर एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग इन स्लीप। आपने जो बोला ठीक है, मैं उसी को थोड़ा सा और एलाबोरेट करूंगा। नो, ब्रेन इज फिजिकल ऑर्गन एंड माइंड इज दी एबिलिटीज काइंड ऑफ अ सॉफ्टवेयर एबिलिटी ऑफ द सोल। सोल के लिए बोलते हैं ना मन बुद्धि और संस्कार, वो शक्ति है आत्मा की। एंड ब्रेन व्हेन यू टॉक इट इज अ फिजिकल ऑर्गन, हार्डवेयर, द माइंड, दिस इज नॉट द फिजिकल। ब्रेन के लिए नहीं बोल रहा, ब्रेन विल कम अंडर द बॉडी पार्ट, इट विल कम अंडर द बॉडी। व्हाट शी वाज सेइंग ना, ब्रेन के भी कई सारी चीजें, क्योंकि स्लीप में बॉडी के लिए भी बहुत सारी फंक्शंस होती है, ब्रेन इज ऑल्सो वन ऑफ देम, उसके लिए भी करता है, लेकिन प्राइमरीली पर्पस है माइंड को रिचार्ज करना। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, एक हिल है, हिल के ऊपर आप दौड़ रहे हो, दौड़ते दौड़ते सबसे टॉप में पहुंच गए और उसके बाद अचानक खाई है, क्या करोगे, क्या करोगे? स्टॉप कर जाओगे. और कुछ क्या करोगे? वापस आ जाओगे. ओके, अभी ये सेम केस है ना, बट सिनेरियो थोड़ा चेंज है. एक रूम है, रूम पे एक बेड है, बेड पे आप सो रहे हो और आपको एक सपना आ रहा. सपने में आप दौड़ रहे हो, वही हिल है और वही आप दौड़ रहे हो. दौड़ते 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 सबसे टॉप पे पहुंचे और अचानक खाई है, क्या करोगे? क्या करोगे? हाँ जी, गिर जाएंगे, उठ जाएंगे, डर जाएंगे, नींद खुल जाएगी. वो घबरा जाओगे तभी खुलेगी ना. बट द सीन वॉज सेम, इट वॉज द सेम हिल एंड द सेम पर्सनैलिटी. आप ही दौड़ रहे थे और वो ही पहाड़ी थी. एग्जैक्टली आइडेंटिकल सिचुएशन. टॉप में पहुंचे बट एक टाइम आपका रिएक्शन रुक जाएंगे, वापस आ जाएंगे, दूसरे टाइम गिर जाएंगे, घबरा जाएंगे, डर जाएंगे, उड़ जाएंगे. यू आर द सेम इंडिविजुअल एंड वॉज द सेम सिचुएशन. क्यों ऐसा अलग रिएक्शन है? बॉडी इज नॉट इन अ कंट्रोल ड्यूरिंग द स्लीप. बट बॉडी से तो कुछ कर ही नहीं रहते आप, उससे स्लीप में तो आप भाग रहे थे ना, मतलब ड्रीम में भाग रहे थे. सो दिस रीजन इज द पर्पस ऑफ स्लीप इज टू रिलैक्स, रिफ्रेश, रिचार्ज द माइंड. माइंड को रेस्ट देना है. नॉर्मली आप दिन में जब भाग रहे थे डे टाइम में, तो जब ऊपर पहुंचे तो आपको रुकना था. रुकने का डिसीजन कौन ले रहा था? माइंड ले रहा था. माइंड ने डिसीजन लिया, आप रुक गए. स्लीप में वो फैकल्टी जो डिसीजन लेने वाली थी वो रेस्ट में थी. देयर वाज नोबडी टू टेक डिसीजन. सो आप दौड़ गए. एक्चुअली दौड़ते दौड़ते आप दौड़ गए, गिर गए, बट क्योंकि ड्रीम में हो रहा था तो आप घबरा के उठ गए. तो पर्पस ऑफ स्लीप इज टू गिव रेस्ट टू द माइंड. माइंड को रेस्ट मिल रहा. नाउ देयर आर टू एस्पेक्ट्स, एक क्वांटिटी एक क्वालिटी. क्वांटिटी का एस्पेक्ट वील सी लेटर कि कितना सोना चाहिए, बट क्वालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. और आज सबसे बड़ा जो हमारा इफेक्ट हो रहा है क्वालिटी के ऊपर इफेक्ट हो रहा है. सो द प्रिंसिपल इज व्हेन यू आर स्लीपिंग योर बॉडी एंड माइंड शुड नॉट बी इन डिस्कम्फर्ट. अनफॉर्चुनेटली टूडे वी आर मेकिंग बोथ इन डिस्कम्फर्ट एंड देन स्लीप. तो हमारे क्वालिटी ऑफ स्लीप पे इफेक्ट तो होगा ही. अच्छा बताओ, आप अपने बॉडी को डिस्कम्फर्ट में कैसे कर रहे हो? हाँ? तो देखो, पहले के टाइम में क्या होता था कि क्योंकि बिजली नहीं होती थी तो लोग सनसेट के साथ भोजन कर लेते थे, अर्ली डिनर करते थे और उसके कुछ टाइम के बाद फिर सोते थे. तो व्यक्ति खाता था, कुछ टाइम के बाद सोता था, तो ही हैड सफिशिएंट टाइम टू डाइजेस्ट द फूड. टुडे दी सोसाइटी में जिस तरह से कल्चर हो गया तो हम लोग लेट खाना खाते और हैवी खाना खाते. अब आप लेट खाए, हैवी खाए, अब आपने सोया, अब बॉडी को उस खाने को पचाने का काम किसका है? बॉडी का काम. तो बॉडी कंफर्ट में उसको काम दे दिया, अब उसको काम दे दिया, इट इज नॉट इन कंफर्ट स्टेज ना, तो बॉडी तो काम कर रही है, तो बॉडी को डिस्कम्फर्ट कर दी. वो भी हो सकता है. कंफर्ट पे तो कंफर्ट होता है. गर्मी में आपको फैन भी सही स्पीड में करना, अभी एसी भी फुल स्पीड में कर दे तो ठंडी भी लग जाएगी, तो वो अलग बात है. सो कंफर्ट है ना. और दूसरा, माइंड को कैसे डिस्कम्फर्ट कर रहे हो? माइंड का काम है, रात को तो माइंड को स्लो होना है, खत्म करना है, सब साइलेंस में जाना है. लेकिन आप सोने से पहले, क्योंकि बहुत हमारा लाइफस्टाइल ऐसे पूरे दिन बिजी है, फिर ये है वो, तो रात को हमको लगता है कि अभी टाइम फ्री मिला, तो अभी हम न्यूज देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, तो बहुत सारा इन्फॉर्मेशन लिया आप और आप फिर सोने गए, क्या होगा? आपको इन्फॉर्मेशन तो सोने के बाद काफी टाइम तक तो चलेगा ना. वो तो जैसे इतना इनपुट दे दिया तो धीरे धीरे, जैसे नहीं वो टॉप को होता टर घुमा दिया, फिर वो धीरे 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 फिर वो रुकता. तो आपने सोने से पहले माइंड में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दे दिया, तो काफी देर तक माइंड उसके ऊपर सोच रहा. तो आपने बॉडी को भी डिस्कम्फर्ट किया, माइंड को भी डिस्कम्फर्ट किया. और दोनों बहुत सिंपल मिस्टेक्स है, इन द सेंस दैट दोनों को करेक्शन करने के लिए थोड़ा सा कोई अटेंशन दे तो आराम से कर सकता. मुश्किल है इसमें अर्ली डिनर करना या सोने से एक डेढ़ घंटा पहले ऑल दिस इंफॉर्मेशन सबको फुल स्टॉप लगाना, थोड़ा सा लाइफस्टाइल चेंज है बट लाइफ टाइम फायदा है, क्योंकि एवरीडे का फायदा में स्लीप तो एवरीडे की है। अब नींद में आप अगले दिन के लिए पूरी एनर्जी जनरेट कर रहे हो, अगर कोई कारण से वो जनरेट नहीं हो रही तो नेक्स्ट डे इट इज गोइंग टू अफेक्ट यू। एक और चीज स्लीप के साथ जुड़ी होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। कई सारे थोड़े अलग अलग रीजन से बहुत सारी जिम्मेवारियां करके नींद नहीं आती है। तो एक बार दादी प्रकाश मनीषी वॉज चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारीज, तो उनसे ऐसे मीडिया विंग में किसी ने पूछा कि दादी जी आपकी इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, 120 कंट्री में आपकी ब्रांचेस है, इतने सारे सेंटर्स है, इतनी सिस्टर्स डेडिकेटेड है, इतने सारे आपके काम चलते हैं, तो रात को जब आप सोने जाते हो तो क्या आपको नींद आती है? तो ये मीडिया कुछ मीडिया कॉन्फ्रेंस थी, मीडिया वाले थे। तो दादी जी ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया, बोला मैं जैसे ही सोने जाती हूँ मैं टक एक करवट बदलती हूँ, सो जाती हूँ। मीडिया वाले ने बोला ऐसा कैसे हो सकता है, आपकी तो इतनी सारी जिम्मेवारियां। तो दादी जी ने बड़ा अच्छा आंसर दिया कि मेडिटेशन से मेरे माइंड का ब्रेक बहुत पावरफुल। हम सब भी जब सोने जाते हैं तो फुल स्टॉप लगाना चाहते हैं क्योंकि अभी सोना है ना, रेस्ट करना, लेकिन हमारा ब्रेक क्या होता है, थोड़ा कमजोर है ना, किसी का 10 मिनट में लगेगा, किसी का 20 का, किसी का आधा, किसी का एक घंटा, डिपेंडिंग ऑन कितना पावरफुल। लेकिन मेडिटेशन से आपका माइंड का एक्चुअली सही चीज तो बोलेंगे माइंड का कंट्रोल अच्छा होता है। जिस समय मुझे जो एक्टिविटी करनी है तो मैं माइंड उस तरफ लगा सकता हूं, जब मुझे फुल स्टॉप लगाना है तो मैं फुल स्टॉप लगा सकता हूं। अब नींद को समझने के लिए कुछ यंत्रों का आविष्कार हुआ। ओके ओके मतलब माइंड में अननेसेसरी इंफॉर्मेशन नहीं रखो। बिल्कुल चलेंगे, मैनेज क्यों करें? तो इसीलिए सोने से पहले भी एक ड्रिल है, मैं लास्ट में बताऊंगा कि सोने से पहले भी थोड़ा सा कुछ चीजों पे अटेंशन देंगे ना तो आपको रात को अच्छी नींद आएगी। तो इनमें से कौन सा यंत्र से यू आर मोर फेमिलियर? ईसीजी सब फेमिलियर है ना, बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ईईजी है फॉर दी अंडरस्टैंडिंग द स्लीप वाला। तो व्हाट इज ईईजी? इलेक्ट्रो एनसीफेलोग्राफ है ना, करेक्ट। सो इट रिकॉर्ड्स दी ब्रेन की वेव्स को, बेसिकली ब्रेन भी कुछ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेज होता है, कुछ फ्रीक्वेंसी पे चलता है और अलग अलग टाइम पे हमारा अलग अलग स्टेज होता है। तो नॉर्मली क्या होता है स्लीप में, ये सब यंत्र आपका कनेक्ट करते हैं, पूरे नाइट को ऑब्जर्व करते हैं, एंड देन वी सी हाउ द ब्रेन इज फंक्शनिंग एट डिफरेंट टाइम्स। तो हमको चार स्टेज मिलते हैं। पहला स्टेज होता है उसको हम बोलते हैं बीटा फ्रीक्वेंसी, जो हम लोग जागृत अवस्था में, अगर अभी हम लोग जैसे बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, तो हमारा माइंड जनरली इस स्टेज पे है 13-30 हर्ट्ज है ना, तो इस समय माइंड ऐसे चल रहा है। नेचुरली जब मैं सोने की तरफ जाऊंगा तो माइंड थोड़ा सा शांत होगा, तो एक लेवल नीचे जाएगा, हम उसको बोलते हैं अल्फा फ्रीक्वेंसी, जिसमें माइंड 8-12 साइकिल्स पर सेकेंड चलता है, जिसको लाइट हल्की शांति, लाइट पीस बोलते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद आप गहरी नींद की तरफ जा रहे हो, जिसको हम थीटा फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, माइंड 5-8 हर्ट्ज की तरफ जाता है। और कुछ समय के लिए हमारा माइंड सबसे गहरी शांति में, डीप स्लीप में जाता है, जिसको हम लोग डेल्टा फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, 2-4 हर्ट्ज। तो नींद के समय हमारा माइंड ब्रॉडली ये चार स्टेजेस में वेरी करता है, जागृत अवस्था, थोड़ी हल्की शांति, गहरी शांति की तरफ, और एकदम शांति, फोर स्टेजेस। इसी को एक ग्राफ के रूप में बताया है, और इस पूरे इसमें एक ही ग्राफ है, और इस एक ग्राफ में आपको सारे प्रश्नों का जवाब मिलेगा। तो इसमें है क्या, ये रात को 11 बजे एक व्यक्ति सो रहा है और सवेरे 6 बजे वो जाग रहा है, और ये उसकी वो चार स्टेजेस है। तो जब वो शुरू में है तो जागृत अवस्था में, फिर थोड़ा सा वो हल्की शांति, फिर शांति, फिर गहरी शांति। अब स्लीप थ्योरी बताती है कि सबसे पहली चीज, हम कंटिन्यूस नहीं सोते, हम साइकिल्स में सोते, और ये एक साइकिल करीब 100 मिनट के होते। इसलिए मैंने सबसे पहले बोला, अगर किसी ने भी बोला ना 5 घंटा सोता हूं, 6 घंटा सोता हूं, तो गलत है, हम साइकिल्स में सो रहे हैं, 100 मिनट्स का अप्रोक्सीमेट एक साइकिल। तो व्यक्ति जागृत अवस्था से सबसे गहरी नींद में जा रहा है, फिर वापस ऊपर की ओर आ रहा है, और ये ग्रीन पोर्शन है इसको हम लोग रेम स्लीप बोलते हैं, रैपिड आई मूवमेंट। कोई व्यक्ति सोता है तो हर थोड़े टाइम के आप देखेंगे उसकी पलकें थोड़ी थोड़ी हिलती है, रैपिड आई मूवमेंट। इसको हम स्यूडो स्लीप भी बोलते हैं। स्यूडो स्लीप क्यों बोलते हैं, क्योंकि माइंड जैसे इधर अवेक स्टेज पे है तो वैसे सो रहा है, लेकिन माइंड उतना ही स्पीड चल रहा है उसका, 13 से 30 हर्ट्ज। अब इसमें इंटरेस्टिंग चीज क्या है, सबसे गहरी नींद डेल्टा फ्रीक्वेंसी। स्लीप का प्राइमरी पर्पस है रिचार्ज करना, और रिचार्ज होता है ये गहरी नींद में डेल्टा फ्रीक्वेंसी। तो ये 100 मिनट में करीब 20 मिनट हमको ये सबसे गहरी नींद मिलती है। तो पहली साइकिल में आपको एक गहरी नींद मिली, दूसरी साइकिल में भी मिली, तीसरी साइकिल में ये कम मिलेगी, करीब 10 मिनट मिली, चौथी साइकिल में आपको डेल्टा फ्रीक्वेंसी नहीं मिलेगी, और पांचवी साइकिल में तो ये थीटा भी आपको नहीं मिलेगी। ये चीज कम होता है और ये चीज आप देखेंगे बढ़ता जाएगा, रेम स्लीप जो है ना, रैपिड आई मूवमेंट। तो इसको वापस इसी चीज को वापस मैं एक का बताऊं तो 100 मिनट है अवेक, लाइट स्लीप, ट्रू स्लीप, डीप स्लीप और रेम स्लीप, एक साइकिल 100 मिनट। तो नींद का पर्पस क्या था, अपने को रिचार्ज करना। रिचार्ज कब होता है, साउंड स्लीप, गहरी नींद डेल्टा फ्रीक्वेंसी में। डेल्टा फ्रीक्वेंसी हमको कितने साइकिल में मिलती है, 3 साइकल्स। एक साइकिल कितने मिनट की है, 3 साइकिल कितने मिनट हुए, 300 मिनट्स कितने घंटे हुए। तो स्लीप थ्योरी बोलती है कि एक व्यक्ति को 5 घंटा अगर मिले तो उसके फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए काफी है। अधिकतर हम सब 6 से 8 घंटा समझते हैं। बट इससे भी इंटरेस्टिंग चीज, ये विशेष फोर्सेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ समय पहले हम लोग को एक बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का एक प्रोजेक्ट मिला था स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर, सारे फ्रंटियर्स में जा, तो हमने सोचा चलो उनके लिए करना है तो उनकी क्या प्रॉब्लम्स है देखें। तो एक स्टडी थी बीपीआरएनडी के द्वारा, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, किरण बेदी का जो लास्ट अपॉइंटमेंट था वो बीपीआरएनडी के डीजी थी। तो इसका काम है पूरे सेंट्रल और स्टेट पुलिस की जो भी ट्रेनिंग और इन सब चीजों से। तो इसकी स्टडी में उन्होंने पैरामिलिट्री पे एक पेपर था, एक स्टडी थी कि पैरामिलिट्री में स्ट्रेस क्यों होता है, बहुत सारे कारण थे, और जो नंबर 1 रीजन था वो था लैक ऑफ स्लीप। वो स्टडी प्राइमरली बीएसएफ के ऊपर फोकस थी। 77% लोगों ने बोला कि हमें पर्याप्त नींद नहीं मिलती इसलिए हमें स्ट्रेस होता। अब बीएसएफ के जवान को ये स्ट्रेस क्यों है, क्योंकि उसकी शिफ्ट सिस्टम की ड्यूटी है, तो शिफ्ट में ड्यूटी कर रहा, तो उसको कभी ये मौका नहीं मिला कि रात को 10 बजे सोऊं और सवेरे 6 बजे उठूं, शिफ्ट है तो रात को दिन को, तो उसको हर समय इस बात का स्ट्रेस था कि मुझे पर्याप्त नींद नहीं मिल रही, मुझे नींद नहीं मिल रही, क्यों मैं सो ही नहीं पा रहा, क्योंकि सोता हूं फिर मेरे को जगा देते, सोता हूं मैं साइकिल्स में शिफ्ट सिस्टम कर रहा हूं। लेकिन स्लीप थ्योरी जो समझेगा तो हम वैसे भी साइकिल्स में सो रहे, तो वो क्या रहा है कि वो हो सकता है रात को पूरा उसको 3 साइकिल नहीं मिला, हो सकता 2 साइकिल मिलो, फिर वो दिन में सोता, तो 24 घंटे में उसका वो रिक्वायरमेंट मीट हो रहा है, बट उसको पता नहीं, उसको उस बात का टेंशन सारा टाइम, मुझे नींद नहीं मिल रही, मुझे नींद नहीं मिल रही, मुझे नींद नहीं, तो उस बात का ही सोच सोच के उसको टेंशन हो रहा। तो दिस इज लैक ऑफ नॉलेज। अब आइडियल कंडीशन क्या है, आइडियल कंडीशन तो मैं बोलूंगा कंटिन्यू स्लीप है, बट आइडियल कंडीशन अभी हर समय नहीं मिल सकता, लेकिन उसका नुकसान थोड़ा है, लैक ऑफ नॉलेज के कारण वो नुकसान 10 गुना बढ़ गया उसका। हाँ, इट्स रीस्टार्ट है ना, तो उसके लिए भी मैं एक पॉइंट बताऊंगा कि कैसे जब हम सोते हैं तो सम प्रिकॉशंस व्हाट वी टेक, तो वील हाउ वी कैन इंप्रूव दैट क्वालिटी ऑफ स्लीप। ठीक, हाँ, वो एक दो घटना, अगर स्लीप थ्योरी का बोलूं मैं, व्हाट डज स्लीप थ्योरी सेज, इट सेज कि जब आप सोते हो, जैसे आप समझो 10 बजे सोए और 5 बजे उठे, तो जो भी जितना हुआ ना उसका हाफ टाइम, अभी 10 से 5 के बीच का हाफ टाइम क्या हुआ, 10 o'clock इन द नाइट एंड 5 o'clock इन द मॉर्निंग, व्हाट इज द हाफ टाइम, 3.5, तो 10 से 3.5 करोगे तो 130 ना, 130, तो जो भी मिड पॉइंट है उससे 12 घंटा ऐड करो, तो डे टाइम में 130 हुआ, उस समय 20 मिनट्स का पावर नैप ले सकते हो। पावर नैप थोड़ा एक अलग सब्जेक्ट है, उसमें व्यक्ति डायरेक्टली जैसे कि डीप स्लीप में जाता है। तो कई बार होता है ना आफ्टरनून में भी हम लोग 15-20 मिनट भी रेस्ट करते हैं तो एकदम रिफ्रेश हो जाते हैं, है ना। उसमें हम लोग को ऐसे ग्रेजुअल स्टेप में नहीं जाना पड़ता। तो पावर नैप का भी एक प्रिंसिपल है, तो मैंने आपको शॉर्ट में बताया उस तरह से वो फंक्शन करता है। दिस स्लीप थ्योरी इज जनरली फॉर 7 to 70 ईयर्स, एकदम यंग एज और एकदम ओल्ड। ये तो देखो डाटा के ऊपर है ना, वो तो जो इक्विपमेंट्स है मेजर किया उसके हिसाब से बता रहे हैं। एंड सम एस्पेक्ट्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी हैव बीन एडेड, आई सेड ना वो इन आइसोलेशन यू कैनॉट अंडरस्टैंड दैट। आइडल टाइम बोलेंगे तो 10 to 3:30 इज द आइडल टाइम, क्योंकि हम लोग इधर फॉलो करते हैं। या बिकॉज अर्ली मॉर्निंग का टाइम का बहुत इंपॉर्टेंस है, आई विल शो दैट ऑल्सो क्यों इंपॉर्टेंस। सो इसमें एक स्लीप है रेम स्लीप, रैपिड आई मूवमेंट, ये देख रहे हो ना ऐसे होता है। सो व्हाट हैपेंस यू नो आफ्टर सम साइकल्स दिस पोर्शन विल कीप इंक्रीजिंग, ग्रीन पोर्शन। और इसमें क्या हो रहा है, माइंड वैसे ही चल रहा है जैसे व्यक्ति जाग रहा है। तो आप जब जाग रहे हो तो आप एनर्जी कंज्यूम कर रहे हो, और स्लीप में आप एनर्जी क्रिएट कर रहे हो डीप स्लीप में। तो अगर आप समझो 7 घंटा सोते हो, एक दिन मैंने बोला आप 17 घंटे सो, क्या होगा 17 घंटे के बाद जब उठोगे, बहुत रिफ्रेश होगे? क्योंकि 7 घंटे के बाद व्हाट हैपेंस, नाउ यू स्टार्टेड कंज्यूमिंग एनर्जी। तो आपको फायदा तो नहीं हो रहा, आपकी एनर्जी तो यूज होने लग रही है। तो एनर्जी तो क्रिएट हो नहीं रही, एनर्जी कंज्यूम हो रही है, टाइम आपका वेस्ट हो रहा है, क्योंकि कुछ क्रिएटिव टाइम तो कर नहीं रहा, प्रोडक्टिव तो कुछ कर नहीं रहा है ना। तो इसीलिए ये जो रैम पार्ट है ये बढ़ता जाता है, इट इज लाइक एस इफ योर माइंड इज अवेक, सो यू आर कंज्यूमिंग एनर्जी। सो आफ्टर ए फिक्स पीरियड ऑफ टाइम स्लीपिंग इज वेस्ट ऑफ एनर्जी, वेस्ट ऑफ टाइम, एक आइडियल टाइम के बाद इट इज सर्विंग नो पर्पस। अच्छा, इसमें एक स्टेज जो मिला ना बीटा है, जब जागृत है, एक लेवल नीचे अल्फा, इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। मतलब ये एक व्यक्ति मैं बोलूंगा कि डिस्ट्रेस्ड रिलैक्स्ड हो सकता है, और मेडिटेशन में ये एबिलिटी है, और इतना कन्वीनियंट है कि अगर यहां कोई सिस्टर आपको गाइडेड मेडिटेशन करा रही है, कुछ थॉट्स दे रही है, आप उस थॉट्स को माइंड में बस रिवाइज रिपीट कर रहे हो, आपका माइंड एक लेवल नीचे आ जाएगा। अल्फा स्टेज अचीव करना बहुत इजी, एनीबडी, फॉर एनीबडी यू कैन वेरी इजिली यू नो रिफ्रेश एंड रिलैक्स योरसेल्फ, बहुत इजी है। और ये ईईजी से मेजर भी किया जा सकता है ना, हाँ वो भी कुछ हद तक मेजर करता है, बट इतना एक्यूरेट नहीं है वो, कुछ आई थिंक ब्लड प्रेशर और उसके कारण पल्सेस के कारण कुछ मेजर कर रहा है, बट वो भी कुछ माइंड का स्टेट देता है, माइंड का स्टेट देता है, बट नॉट वेरी एक्यूरेट। स्पार्क में आपने देखा होगा उधर का, तो ये मंडे से संडे का जॉब का एक बड़ा अच्छा फोटो लगा मुझे। हम लोग भी उधर सैटरडे संडे छुट्टी होता है, तो हम लोगों का भी मंडे कैसा मूड होता है, फिर वीकेंड चालू होने वाला, फ्राइडे फ्राइडे सैटरडे कैसा है, संडे, और संडे नाइट को कैसा होता है कि क्या आने वाला अभी। तो ये मैंने है तो बहुत ह्यूमरस, लेकिन ये मैंने बताया इसलिए कि देखो उस चित्र में व्हाई दिस इज हैपनिंग, बिकॉज मेरा मूड इज डिपेंडिंग ऑन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अभी ऑफिस का ये काम है, अभी ये है, अभी वीकेंड है, अभी आउटसाइड सर्कमस्टेंसेस डिसाइडिंग माई मूड। ये कैसे होता है, प्रकृति में एक नियम है, जो शक्तिशाली चीज है वो कमजोर चीज के ऊपर इन्फ्लुएंस करती है। अब बाहर की चीजें मुझे अफेक्ट कर रही है क्योंकि मेरा माइंड कमजोर है। माइंड पूरे दिन में काम करता है तो उसकी एनर्जी डाउन होती है, स्लीप के अंदर हम उसको वापस फुल करते हैं। आज की डेट में हमारी वो क्वांटिटी और क्वालिटी ऑफ स्लीप नहीं है, तो मेरी पूरी एनर्जी फुल हो ही नहीं रही, बैटरी पूरी फुल हो ही नहीं रही, अगले दिन फिर पूरा काम कैसे चलेगा। बैटरी आपने रात को मोबाइल चार्ज नहीं किया तो अगले दिन कितना चलेगा और कैसे चलेगा। तो अब मेरे कमी के कारण वो बाहर की चीजें का आई एम डिपेंडेंट ऑन दैट, वहां से खुशी आएगी तो मैं खुश हो गया, नहीं तो मेरी शक्ति नहीं, हम कमजोर हो गए। हमें अपने आप को शक्तिशाली बनाना है, और स्लीप का इमोशंस के साथ बहुत कनेक्शन, बहुत सारे इमोशंस हैं, उसका बहुत सारा अलग अलग इफेक्ट होता है स्लीप के ऊपर, है ना। और उसमें ब्रॉडली अगर बोले तो अगर पॉजिटिव इमोशंस है तो इट कंजर्व्स योर एनर्जी, नेगेटिव इमोशंस है इट डिप्लीट्स योर एनर्जी एट अ वेरी फास्ट एज। उमंग उत्साह होगा तो आपको नींद नहीं आएगी, कई होता है कई काम होता है जिसमें उमंग उत्साह है, आपको खुशी से कर रहे हो, आपको नींद नहीं आएगी। और वही कोई काम है बोरिंग है, दिल नहीं है, कुछ नहीं है, आप मूड ऑफ है, फटाफट नींद आएगी। कई लोग ऐसा है कि बोलते हैं कि मेरे को 8 घंटा है, 8 घंटा नींद नहीं मिली तो मैं डिस्टर्ब रहूंगा, मतलब मेरे को 8 घंटा तो चाहिए ही चाहिए। अब स्लीप थ्योरी ने तो कह दिया इतना नहीं चाहिए, लेकिन उसका फिक्स है 8 घंटा, तो वो उसने एक हैबिट बना ली. ही इज स्लीपिंग जस्ट बिकॉज ऑफ हिज हैबिट, इट इज नॉट बेनिफिटिंग हिम, बट हैबिट बना दी इसलिए उसने बना दिया. तो इट इज एन हैबिट, एन हैबिट बनाया, हैबिट को चेंज भी किया जा सकता है, बट बॉडी और माइंड का रिक्वायरमेंट नहीं. तो मॉर्निंग का मेडिटेशन, तो मैं नाउ इफ यू अंडरस्टूड सम ऑफ दिस थिंग्स, तो माई क्वेश्चन इज यहां मॉर्निंग में जब हम उठेंगे तो आपको क्या लगता है, आपका माइंड सबसे फुल्ली चार्ज होना चाहिए ना, आफ्टर ए स्लीप बैटरी फुल चार्ज होना चाहिए. तो फुल चार्ज जब हो गया माइंड, तो फिर मॉर्निंग को मेडिटेशन करने की क्या जरूरत है. यहां आपको मॉर्निंग मेडिटेशन करा रहे हैं, यहां के लोग मॉर्निंग मेडिटेशन करते हैं. जब आपका माइंड फुल्ली चार्ज है तो फिर आपको मेडिटेशन करने की क्या जरूरत है. एनवायरमेंट अच्छा है ठीक है, लेकिन जैसे एक तरह से कहूंगा बैटरी चार्ज है तो फिर मेडिटेशन करने की क्या जरूरत है, मॉर्निंग क्यों करने की जरूरत है. फोकस करके क्या करना है आपको, बैटरी तो चार्ज है आपकी, वो तो पूरे दिन में करते रहो ना, यूज करते रहो. कोई नहीं, उसका रीजन है कि अभी तक जो अंडरस्टैंडिंग है मेडिटेशन से, सब लोग यही सोचते हैं मेडिटेशन मतलब माइंड को शांति करना, शांति से ही एसोसिएट करते हैं. मेडिटेशन में सुख आनंद की प्राप्ति होती है, और वो होता है जब हमारा कनेक्शन वो सुप्रीम के साथ होता है. उसके लिए एकाग्रता चाहिए, माइंड पावरफुल होगा तो मैं कनेक्शन कर सकता हूं. अगर दिन में मैं करूंगा तो पूरे दिन की थकावट के कारण मैं अपने माइंड को कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाऊंगा. इसलिए मॉर्निंग का टाइम जब माइंड पावरफुल है, जब एनवायरमेंट में एक शांति है, यू आर हैविंग द असिस्टेंस ऑफ द एनवायरमेंट ऑल्सो, उस समय आप कनेक्शन कर सकते हो. तो मेडिटेशन का पर्पज सिर्फ शांति नहीं, सुख और आनंद का भी अनुभव करना. और ये पहले जैसे जैसे अभी तो जैसे संस्था बड़ी होती, पहले जब संस्था थोड़ी छोटी थी तो ये मेडिटेशन के ऊपर बहुत फोकस था. तो बहुत जगह पूरी नाइट का मेडिटेशन, रात की योग भट्टी बोलते थे, फुल नाइट मेडिटेशन, और उनका चेहरा खिला हुआ उमंग उत्साह से करते. तो खुशी है ना, खुशी है तो आप कितना भी टाइम कर सकते. और इट वॉज अ वेरी कॉमन थिंग. अभी आज किसी को बोला आधा घंटा बैठ के मेडिटेशन करे तो थोड़ा भारी पड़ता, आधा घंटा मुझे एकाग्र होकर बैठना. और वो फुल नाइट मेडिटेशन वो सो कॉमन एक्टिविटी, क्योंकि इतनी खुशी थी, इतनी उमंग उत्साह थी. तो स्लीप, सॉरी, मेडिटेशन इज नॉट ओनली फॉर एक्सपीरियंसिंग पीस, इट इज फॉर एक्सपीरियंसिंग ब्लिस, इट इज फॉर एक्सपीरियंसिंग हैप्पीनेस, खुशी, आनंद की प्राप्ति. तो ये एक लेवल आगे, तो उसको इतना सिर्फ उतने में ही नहीं लिमिट करो कि मेडिटेशन का उतना ही पर्पस है. अब मेडिटेशन और स्लीप के ना बहुत सारे कनेक्शन आप देखेंगे, जब व्यक्ति सोता है तो ये सब चीजें पैरामीटर्स डाउन होते हैं. और यही चीज अगर आप किसी व्यक्ति को मेडिटेट करते हुए देखेंगे ना, तो उसका भी हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, मेटाबॉलिक रेट, ऑक्सीजन कंजम्पशन. लेकिन जो सबसे बड़ा चेंज है ईईजी पैटर्न, जैसे मेडिटेशन स्लीप में स्लो वेव पैटर्न जनरेट होते हैं, मेडिटेशन में भी स्लो वेव पैटर्न जनरेट होता है, एंड दिस कैन बी मेजर्ड. तो अभी वी ऑल अंडरस्टैंड कि स्लो वेव पैटर्न जनरेट करने से बहुत बेनिफिशियल. तो अभी क्या करें, तो आप देखेंगे, एंड दिस इज अ साइंटिफिक फैक्ट, तो दुनिया में बहुत सारे ऐसे मेडिटेशन है, वो अलग अलग तरीके से सिखाते हैं कि कैसे माइंड को स्लो करें. तो जिसको इंटरेस्ट है वो कई सारी चीजें देख सकता है, लेकिन यहां राज्यों का मेडिटेशन के बारे में बता रहा हूं, तो मैं इसका एक एग्जाम्पल देता हूं. तो ये जो चित्र है ये दादी जानकी का है. दादी जानकी जी इस इंस्टीट्यूशन की चीफ थी काफी समय, और इनकी सबसे विशेषता थी कि ये बहुत पावरफुल मेडिटेटर थे. तो जब ये 1970s में पहली बार ब्रह्मा कुमारी इसको बाहर विदेश में जाना था सेवा करने के लिए, तो बाबा ने दादी जानकी को बोला कि आपको जाना है. तो दादी जानकी ने पूछा, मैं तो पढ़ी लिखी भी नहीं हूं, मैं फोर्थ या फिफ्थ पढ़ी थी, मैं इंग्लिश भी नहीं जानती, मुझे इंग्लैंड भेज के मैं विदेश में जाके क्या करूंगी, मैं क्या सेवा करूंगी. तो बाबा ने उनको बस एक ही चीज कहा, बोला बच्ची आपकी योग की शक्ति है ना, वो एक क्वालिफिकेशन इज इनफ, आप बाकी क्वालिफिकेशन की फिक्र नहीं करो. एंड आई सम टाइम बैक वी हैड अ प्रोग्राम इन पूना, मीरा सोसाइटी में वॉज द सेंटर इन विच शी वॉज देयर, वहां से फिर शी वॉज टोल्ड टू गो टू एब्रॉड. तो वहां एक चित्र है, एयरपोर्ट में लोग छोड़ने जा रहे, तो शी हैड जस्ट एक छोटा सा बैग है, सिंपल सी साड़ी है, और वो विदेश जा रही, पढ़ी लिखी नहीं, इंग्लिश नहीं जानती, बस एक योग की शक्ति. आज 130 कंट्रीज में ब्रह्मा कुमारीज की ब्रांचेस, तो सिर्फ एक योग की शक्ति. और ऐसा नहीं है, उसका माइंड उनके ऊपर जब एक्सपेरिमेंट, ये एक्सपेरिमेंट 1978 में हुआ, तो वो डॉक्टर्स जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया ना, तो उन्होंने देखा कि ये महिला जब जागी हुई और बात कर रही है, शी इज जनरेटिंग डेल्टा वेव्स. हम लोग डेल्टा वेव्स कब जनरेट करते हैं? डीप स्लीप में, थोड़े टाइम के लिए. ये जागृत अवस्था में जागे. सो दैट टाइम शी वॉज कॉल्ड द मोस्ट स्टेबल माइंड ऑन अर्थ, डेल्टा वुमन. नाउ सी, ए पावरफुल माइंड का बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट होता. दादी जानकी अभी 2020 में शी लेफ्ट अ बॉडी, और लास्ट तक वो पूरे विश्व में चक्कर लगाती थी, सेवा करती थी. और क्या एज थी लास्ट में? 104. 104 ईयर्स पर भी दादी जानकी विश्व में चक्कर लगाती थी और सेवा करती. तो ये पावरफुल माइंड का बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट होता. जैसे एक स्ट्रेस्ड माइंड का बॉडी के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट होगा ना, तो एक पावरफुल माइंड का बॉडी के ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट होगा ना. तो जब हम सो रहे हैं तो हमको ये चार चीज का ख्याल, ये क्वालिटी के ऊपर, क्वांटिटी तो हमको समझ आ गई, क्वालिटी के ऊपर. फूड मैनेजमेंट, फूड में क्या करना है हमको? लाइट एंड अर्ली. माइंड मैनेजमेंट, माइंड के लिए क्या करना है? हाँ, मतलब बहुत सारा इन्फॉर्मेशन सोने के समय, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन, स्पेशली नेगेटिव इन्फॉर्मेशन. आज आप न्यूज देखेंगे, न्यूज में क्या इन्फॉर्मेशन रहेगा? कोई भी न्यूज देख लो, क्या रहेगा? न्यूज़पेपर का फर्स्ट पेज देख लो, कहीं फ्लड आ गया, कहीं ये हो गया, कहीं ये हो गया. मतलब आई एम श्योर 95% तो नेगेटिव ही रहता. माइंड को अननेसेसरी सोते समय ये सब इन्फॉर्मेशन, और भी बहुत दूसरी भी चीजें हैं, जैसे ना स्क्रीन का इफेक्ट एंड दोस थिंग ऑल्सो इम्पैक्ट योर स्लीप. तीसरा, वाटर मैनेजमेंट. किसी ने पूछा था वाटर के बारे में, तो कोशिश कर रात को अगर बहुत पानी पियेंगे तो नेचुरल आपको बीच में वॉशरूम के लिए उठना पड़ेगा, एंड दैट विल समवेयर डिस्टर्ब योर स्लीप. एंड चौथा है टाइम मैनेजमेंट. इफ पॉसिबल यू शुड हैव ए फिक्स्ड टाइम फॉर स्लीपिंग एंड फिक्स्ड टाइम फॉर वेकिंग अप. बट इन केस देर आर लॉट ऑफ ड्यूटीज वेयर यू हैव टू डू इन शिफ्ट सिस्टम, तो इफ यू आर अवेयर ऑफ द प्रिंसिपल कि वी स्लीप इन साइकिल्स, तो एटलीस्ट हम कोशिश करके उस तरह से हम वो 2+1 साइकिल लें, और वी आर एटलीस्ट एश्योर्ड कि हमारा जो रिक्वायरमेंट है वो तो मीट कर रहा है, और अननेसेसरी हम उसका स्ट्रेस या टेंशन नहीं ले. तो अगर हम थोड़ा सा ये लाइफस्टाइल में चेंज करते तो इट इज अ लाइफ टाइम का बेनिफिट. क्योंकि हर दिन की एक्टिविटी है, हर दिन को आपको उसका प्लस या माइनस, फायदा या नुकसान हो रहा है. एंड जैसे मैंने बोला ना, ये क्यूमुलेटिव है, इमीडिएटली नहीं पता चलता. बहुत यंगस्टर्स है, क्या होता है, हम रात भर पढ़ते हैं, टीवी देख रहे हैं, 3 बजे सोएंगे, 4 बजे सोएंगे, बिकॉज वो इमीडिएट इफेक्ट नहीं है ना, तो ही इज थिंकिंग नथिंग इज हैपनिंग. बट ऐसा होता क्या? इट इज ऑल एक्यूमुलेटिंग. एंड देन यू फाइंड सडनली 35 ईयर्स था, बड़ा यंग था, जिम जाता था फलाना, और सडनली हार्ट अटैक. दैट डिड नॉट हैपन ओवरनाइट, इट वॉज एक्यूमुलेटिंग, बिल्डिंग अप एंड समवेयर इट बिल्डिंग. तो अगर थोड़ा सा हम अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करते तो हम अपने फिजिकल हेल्थ के लिए और मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा ये कर सकते हैं, मतलब बेनिफिशियल. मतलब साइकिल ना, आई वाज सेइंग 3 साइकिल्स तो रिक्वायरमेंट होता है. तो अगर कोई शिफ्ट सिस्टम है, उसके ड्यूटी है 5-5 घंटा, 6-6 घंटा, तो रात को 2 घंटा ही मिल, 2 साइकिल्स ही मिल पाया. सपोज 1 साइकिल वॉज सम 100 मिनट्स ना, 200 मिनट्स, 4 घंटा ही उसको रात को सोने को मिला, और दिन में उसने फिर सोया. वो तो करते ही है, जवान भी क्या करता है, अगर रात को शिफ्ट सिस्टम में उधर नहीं हो सकता तो दिन में कहीं सोता. तो एटलीस्ट इज अवेयर कि उतना 3 साइकिल में मेरे को जो रिक्वायरमेंट है वो मेरे को मिल रहा है. तो थोड़ी सी हम अगर हमारी लाइफस्टाइल को चेंज करते हैं तो आप देखेंगे आपको लाइफ टाइम उसको बहुत बेनिफिशियल मिलेगा. तो मैंने कुछ एस्पेक्ट्स को टच किया, बहुत सारे और एस्पेक्ट्स हैं विच एक तो टाइम की शॉर्टेज और कई सारे बिल्कुल मेडिकल इश्यूज. मतलब मेडिकल, कई बोलते हैं नींद में वॉकिंग है, नींद में कोई बात कर रहा है. सो देर आर लॉट ऑफ इश्यूज, सो वी आर नॉट गोइंग टू दैट बिकॉज इट डज इन एफेक्ट. इट इज कंटिन्यूस इज द बेस्ट, दैट इज आइडियल. नेचर में हर चीज बनाया हुआ, रात को सोना है, कंटिन्यूस सोना है. हाँ, एट दिस स्टेज इट डिफिकल्ट फॉर मी टू से, बिकॉज आई सेड ना, सिर्फ साइकिल से नहीं, और भी उसका क्या है, दिन में भी क्या काम कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, बहुत सारे फैक्टर्स इफेक्ट कर. सो आई विल कम टू अवर फर्स्ट क्वेश्चन. अभी आप क्या समझते हो, जो सबसे बड़े जानवर थे इतना कम क्यों सो रहे थे? मेटाबॉलिज्म. डेल्टा वेव्स. अच्छा, क्या रीजन हो सकता? क्वालिटी स्लीप. देखो, अगर कोई स्ट्रेस में होगा तो उसको नींद आएगी नहीं. तो जो एनिमल किंगडम है ना, एनिमल किंगडम में स्ट्रेस का एक बहुत बड़ा रीजन होता है फूड. और फूड भी दो तरह का, एक उसको अपने फूड की फिक्र है, दूसरा कोई उसको फूड ना बना दे. अब ये जो बड़े लैंड एनिमल्स थे, ये वेजिटेरियन थे, तो उनका फूड अबंडेंट है. दूसरा, क्योंकि वो बड़े हैं तो उनको दूसरों से इतना डर नहीं, तो कहीं ना कहीं उनको वो दोनों तरह का स्ट्रेस कम है. तो सर ना, बैटरी स्ट्रेस में ज्यादा डिस्चार्ज होगी, अगर आपकी बैटरी कम डिस्चार्ज हुई तो रिचार्ज करने में भी कम टाइम चाहिए. तो दैट कुड बी वन रीजन वाई दे रिक्वायर स्विच. हाँ, नहीं, वो तो देखो एक हैबिट से तो आजकल रिवर्स कर दिया, लोग रात को उठते हैं सवेरे सोते हैं, दैट कैन. बट ए नेचुरल वे में दिन में तो थोड़ा ही, अगर सोना है तो थोड़ा ही सोना है, क्योंकि इधर अगर ज्यादा सो गए तो उसका इफेक्ट फिर नाइट को होगा. तो इट इज नॉट एडवाइजेबल. बेनिफिट भी नहीं. मैग्नेटिक डायरेक्शन का उन्होंने पूछा, आई एम नॉट कॉम्पिटेंट टू से, मतलब उसका इफेक्ट होता होगा, बट आई एम नॉट अवेयर. ठीक है. सो एनी अदर क्वेश्चन? अदरवाइज वी विल ड्रीम्स एंड स्लीप. ओके, एक क्लास वाले पहले बोलो, फिर आई सी वन. हाँ, कई लोग वैसे अपने आप ही कर रहे थे, कोई बात नहीं. उनको किसी की परमिशन नहीं चाहिए होती. अच्छा, कई बार तो ऐसा भी नहीं होता, कई बार वो चाहते नहीं है तो भी हो जाता है ना. तो वी विल, उन्होंने ड्रीम्स का पूछा ना, तो ड्रीम्स का भी एक कई सारे एस्पेक्ट्स हैं उसमें, लेकिन मैं आई विल गो बैक टू द सोर्स ऑफ अवर नॉलेज, क्योंकि मैंने एक बार हमारे जो स्पिरिचुअल डिस्कोर्स में मैंने एक बार पढ़ा था, तो उसमें इसके बारे में बताया था कि अगर पूरे दिन में आपके शक्तिशाली संकल्प हैं तो रात को आपको किसी तरह के कमजोर संकल्प या डरावने संकल्प नहीं आ सकते. दैट वॉज अ स्टेटमेंट. अगर मैं पूरे दिन में कोई तरह का स्ट्रेस, टेंशन और ये इस तरह के थॉट्स रहेंगे ना, तो फिर चांसेस है कि नाइट को भी मेरे को इस तरह के सपने आएंगे. कहीं ना कहीं उसका रिफ्लेक्शन वहां होता है, सबकॉन्शियस में उसका रिफ्लेक्शन होता है. हाँ, एक्चुअली मैंने वो स्लाइड को हाइड कर दिया था. द होल पर्पस इज, ये चार चीजें मैंने बनाई. होल पर्पस इज देखो, माइंड के लिए है और माइंड को रिलैक्स करना है. तो हम लोग तो ये चीज को बोलते ही हैं कि आप सोने से पहले 5-10 मिनट मेडिटेशन करेंगे तो सबसे अच्छा है, आपका जो क्वालिटी वाले इंडेक्स को बढ़ाना है. तो कई लोग बोलते हैं मेडिटेशन मेरे को नहीं आता, तो कुछ पॉजिटिव चीज पढ़ो. पॉजिटिव चीज का इफेक्ट माइंड को स्लो करना होता. कोई भी साहित्य, पॉजिटिव साहित्य भी बहुत अच्छा है, वो भी अगर थोड़ा पढ़ते तो माइंड को स्लो करने पर. नहीं, अगर मेडिटेशन का देखो एक कई सारे पर्पस है. हाँ, नहीं नहीं, जब आपको नॉर्मल नींद आ रही है. नहीं, मैंने बोला ना, मेडिटेशन का एक ही पर्पस नहीं है. दैट इज, मेडिटेशन का और भी पर्पस है कई चीजों को. जैसे वो ड्रीम बोला ना, तो ड्रीम भी कई है, वो इट इज कंटिन्यूइंग द डे टाइम की एक्टिविटीज. तो मेडिटेशन इज पुटिंग फुल स्टॉप ऑल दोज थिंग्स, दैट विल हेल्प यू इन अदर थिंग्स ऑल्सो. तो ये नियम के हिसाब से भी हमारे यहाँ जनरली हम कोशिश करते हैं सोने से पहले थोड़ा मेडिटेशन करके सोए. एक, ऐसा नहीं है, सपने सबको आते हैं, सपने याद नहीं रहते. रेम स्लीप में सब जाते हैं, तो रेम स्लीप में सपने भी आते हैं, लेकिन वो सपने सबको याद नहीं रहते, बस उतना ही, वही डिफरेंस. हाँ, कभी कभी याद रहते, कभी कभी, डिपेंडिंग किस स्टेज पे उठे, जिस समय सपने चल रहे हैं उसी समय उठे तो और विविडली याद होगा, मे बी अदर टाइम इतना विविडली याद नहीं होगा. है नहीं, उनका क्वेश्चन है कि जैसे सोते ही तुरंत नींद आ गई तो अच्छा है या नहीं है, आपको क्या लगता है? भाई, आप सोने के लिए जा रहे हो, आपका जो पर्पस है तुरंत सॉल्व हो रहा है तो. हाँ, नहीं, वो तो अच्छा. आप एक लास्ट क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद वी विल फिनिश, है ना. हाँ जी, पूछिए. नहीं नहीं,
तो
कराटे वाला इज अ मेडिकल इशू, मतलब कहीं ना कहीं वो अपर नहीं आया और उसका कुछ हो रहा है, बट इट इज अ मेडिकल इशू, तो इट इज अ मेडिकल डॉक्टर हु विल रिजॉल्व इट एंड इट हैज नथिंग टू डू विद एनी अदर थिंग्स, इट इज अ मेडिकल इशू, है ना। मैं एक लास्ट चीज से बोलता हूँ, जैसे ये सोने के बहुत सारे होते हैं, जैसे स्लीप टॉकिंग होती है, कई लोग स्लीप में बात करते हैं, तो वो भी एक अलग एस्पेक्ट है। तो एक बार हमारे एक इंसिडेंट का आया था मीडिया में, न्यूज़पेपर में आया था, तो ये कोई गल्फ कंट्री का एग्जांपल था कि केस था, तो वो बड़ा ऑर्थोडॉक्स कंट्री है ना, कोई इस्लामिक कंट्री थी, बहुत ऑर्थोडॉक्स थी, तो वहाँ ऐसे कोई जॉइंट फैमिली में सो रहे थे, तो वो हस्बैंड को नींद में बोलने की आदत थी, तो उसने नींद में एक बार ऐसे बोल दिया, तलाक तलाक तलाक। अब सब लोगों ने सुन लिया, तो आप वो कितना भी बोले कि नहीं 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 मेरा कोई इंटेंशन नहीं था, लेकिन बोला नहीं नहीं भाई हमारा लॉ बहुत क्लियर है, आपने 3 बार तलाक बोल दिया, आपका तलाक हो गया। तो स्लीप से रिलेटेड मेडिकल इश्यूज है, तो दैट वी विल कीप असाइड, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, ओम शांति।